कुंज बिहारी जय राज माधव कुंज
को जयं विष्णुपाद परमहंस परिव्राज गाचार्य श्री श्रीमद् अभयचरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी महाराज की जय। जगद्गुरु श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वत ठाकुर श्रील प्रभुपाद जी महाराज की जय। अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की जय। श्री श्री गौर नित्यानंद प्रभु की जय। कृष्ण बलराम की जय। जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय। श्री श्री राधा माधव श्री श्री राधा गोपाल जी की जय। पंचतत्व नृसिंहदेव भगवान की जय। श्री श्री राधा गोपीनाथ जी की जय। संबित वैष्णव भक्त वृंद की जय। नेताय गौर प्रमानंदे हरि हरि। ओं ज्ञानतिमिरांधस्य ज्ञानंजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रस्थाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादि पाश्चात्य देश तारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कंत राधा कंत नमस्तुते। तप्त कंचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरे प्रिय। श्री नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां श्री जगन्नाथाय ते नमः। नम महाबदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरत्वसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि श्री गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्ण। प्रभु श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महाराणी की महती कृपा से और सभी आचार्य गुरु परंपरा साधु लोग की महती कृपा से प्रभुपाद जी की महती दया से हम लोग को ठाकुर जी की कथा सुना सुनने को मिलता है। सो ये समन दैट अंडरस्टैंडिंग हिंदी प्रभु जी इज ट्रांसलेटिंग इन मैंगो देयर। कल हम सुन रहे थे नीलाचल क्षेत्र में श्री क्षेत्र में पुरी में पंच तीर्थ। लेकिन तीर्थ ऐसा नहीं बोलना चाहिए कि पांच तीर्थ है। जगन्नाथ तो स्वयं भगवान जहां रहते हैं साक्षात जगन्नाथ जहां है ना सब तीर्थ उधर ही भगवान की चरण कमल में सब तीर्थ आश्रय लेते हैं। तीर्थ पदम भगवान के एक नाम है तीर्थ पदम। जितना तीर्थ सब निकलता है जहां भी तीर्थ बना है ना वो ठाकुर जी का चरण कमल है तब तो वो तीर्थ है। और वो तीर्थ को पवित्र करते हैं ठाकुर जी का चरण कमल नहीं तीर्थ जैसा गंगा जमुना इसको पवित्र करते हैं। तीर्थी तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानि स्वान्तस्तेन गदाधर जो शुद्ध भक्त है वो तीर्थ को सचमुच तीर्थ बनाते हैं। लोग जाते हैं ना गंगा जाते हैं जमुना जाते हैं नहाते हैं दूसरा दूसरा तीर्थ जाते हैं उधर दान पुण्य करके खुद का जो पाप है उधर छोड़ कर आते हैं। तो वो तीर्थ में सब पाप है। लेकिन युधिष्ठिर महाराज ने विदुर को यही बोले कि साधु संत लोग जो महात्मा है जो शुद्ध भक्त है वो क्यों भ्रमण करते हैं, तीर्थ में जो पाप है वो जब साधु शुद्ध भक्त उधर जाते हैं ना वो पाप को वो साक्षात ग्रहण करते हैं। वो कैसे ग्रहण करते हैं, स्वांतस्तेन गदाप्रता, शुद्ध भक्त का अंतर में भगवान साक्षात विराजमान करते हैं। ठाकुर जी मंदिर में है और अगर किधर है क्या नहीं है कभी कभी हम लोग का संदेह मन में होता है ठाकुर जी कहां है या नहीं है, लेकिन एक स्थान पर जरूर है। हम पढ़ते हैं ना, तुम्हार हृदय सदा गोविंद विश्राम, गोविंद कहे न मामा वैष्णव परायण। ठाकुर जी कहां है या कहां नहीं है, ठाकुर जी सब जगह में है, भगवान सब जगह में, यूरोप में है, अमेरिका में है, इंग्लैंड में है, भारत में है, सब जगह में भगवान है। लेकिन ये उनका परमानेंट प्लेस है, उनका धाम है, वो उधर ही जरूर रहते हैं, वो शुद्ध भक्त का अंतर में। तुम्हार हृदय सदा गोविंद विश्राम, ठाकुर जी उधर ही रेस्ट लेते हैं। इसे तीर्थ अकाल हम सुन रहे थे ना, पांच तीर्थ है, इसे तीर्थ नहीं बोलना चाहिए लेकिन ये प्रसिद्ध है। इसका मतलब जो जगन्नाथ पुरी जाते हैं ना ये पांच तीर्थ में नहाना चाहिए, वो जल लेते हैं, जो नहीं लाते हैं ना वो जल लाकर छिड़क देते हैं मस्तक में। कल सुनते हैं सुन रहे थे ना स्वर्गद्वार, स्वर्गद्वार का पास समुद्र है, समुद्र में नहाना चाहिए। समुद्र में लोग नहाते हैं क्यों, स्पोर्टिंग करते हैं क्यों, मटेरियल प्रेजर के लिए ना, स्पोर्टिंग क्या बोले, स्विमिंग करते हैं एंजॉयमेंट के लिए। लेकिन पूरी में जो समुद्र है वो इसके लिए नहीं है, बाहर लोग को पता नहीं, भक्त लोग को पता होना चाहिए। पूरी में हम कभी स्विमिंग नहीं करना चाहिए क्योंकि वो तीर्थ हो गया। कब तीर्थ, जगन्नाथ जी तो है लेकिन चैतन्य महाप्रभु ने ये बताया जब हरिदास ठाकुर जी को समाधि दिए बालू में, महाप्रभु ने उस जल को लाए, समुद्र जल को लाए और महाप्रभु ने साक्षा जो नामाचार्य हरिदास ठाकुर जी का चरण कमल को धोए और सब भक्त लोग पान करने लगे और उधर महाप्रभु ने समाधि दी और चैतन्य महाप्रभु ने ये बोले कि आज ये समुद्र महातीर्थ हो गए, पहले तीर्थ था अभी महातीर्थ हो गए। इसलिए हम जब जाते हैं जगन्नाथपुरी उधर जो समुद्र है, समुद्र में वो नहाते हैं, जिस दूसरे समुद्र में लोग स्पोर्टिंग करते हैं सी बीच में, हमें से कभी नहीं करना चाहिए। तो तीर्थ है, तीर्थ में कैसे नहाना चाहिए ये भी शास्त्र में है। गंगा का मंत्र है, जमुना का मंत्र है, राधा कुंड का मंत्र है, मंत्र किसको मंत्र नहीं ना, तो हरे कृष्ण महामंत्र बोलना चाहिए बस। और अच्छा कपड़ा पहनना चाहिए, नहाने से पहले प्रणाम करना चाहिए और भीतर जाना चाहिए, तीन बार डुबकी लगाना चाहिए, ज्यादा नहीं, स्पोर्टिंग नहीं, स्विमिंग बोलते हैं ना, नहीं स्विमिंग नहीं करना चाहिए, गंगा में, जमुना में, राधा कुंड में, कोई भी तीर्थ में जो जल है इसमें स्विमिंग नहीं करना चाहिए, अपराध। तीन बार डुबकी लगाना है, नहाना है भगवान के नाम करते करते, और कोई साफ सुथरा नहीं करना चाहिए, कपड़ा वगैरह साफ सुथरा नहीं करना चाहिए, शरीर साफ सुथरा नहीं करना चाहिए। जैसे आप नहाते हैं ना इसे साफ सुथरा करते हैं बेटी को, इसे नहीं करना चाहिए। तीन बार डुबकी लगाकर ऊपर आना चाहिए बस, हो गया। अच्छा कपड़ा पहनकर जाना चाहिए, वो तीर्थ है, गंगा में, जमुना में। कल हम सुन रहे थे ना श्वेत गंगा, एक समुद्र दूसरा है श्वेत गंगा, गंगा प्रकट। पूरी में कितना जगह में गंगा है आपको पता है, मुझे तो तीन चार स्थान है, ज्यादा हो सकता है मुझे पता नहीं कहां कहां पूरी में गंगा प्रकट हुए हैं, आप लोगों को पता है। कल सुन रहे थे ना कहां प्रकट हुए, श्वेत गंगा सुन रहे थे ना, गंगा माता गोस्वामी के लिए, सची देवी के लिए प्रकट हुए गंगा साक्षात। और दूसरा कहां गंगा है आपको पता है, भगवान के चरण कमल जगन्नाथ जी मंदिर में है ना, जगन्नाथ जी के चरण कमल में गंगा है, उधर गंगा जी है। मंदिर का भीतर आप गए हैं कभी? कौन गए हैं आप? गए हैं? अच्छा, आपको देखा है, आप देखे हैं 22 स्टेप्स जो है ना, 22 स्टेप्स है मंदिर में, इसमें एक स्थान पर गंगा है, देखे हैं आप? नहीं। जो स्टेप में जाते हैं ना, आप देखिए सब लोग जाते हैं, जितना जिन लोग को पता है वो कभी उधर पैर नहीं रखते हैं। उधर एक अलग पत्थर है, जब राजा ने वो 22 स्टेप को बना रहे थे तो एक स्थान में गंगा जी प्रकट हुई। जैसे आप कोई कंस्ट्रक्शन काम कर रहे हैं तो पानी ऊपर आ गए तो आप क्या करेंगे? काम करना मुश्किल है ना। पहले जमाने में चूना और गुड़ लेकर उसको पेस्टिंग करते थे, और लोगों जो पत्थर में जो 22 स्टेप बना रहे थे ना, इसमें इतना जो कारीगर लोग इतना तंग हो गए कि पानी बहुत जोर से पानी आने लगा एक स्थान से। अब जाएंगे तो देखेंगे उधर है अभी। बहुत जोर से पानी आने लगे, तब काम जितना कारीगर लोग थे ना सब तो काम बंद हो गया, कैसे काम करें? ये तो संभव नहीं है काम करना। तब तो पुजारी लोग जगन्नाथ जी के सामने बिना भोजन में ठाकुर जी को प्रार्थना किया, ठाकुर जी क्यों ऐसा हो रहा है, पानी क्यों निकल रहा है? आपको पता है ना, आप अगर जाएंगे जगन्नाथपुरी के भीतर जाएंगे तो भीतर है मंदिर में, जितना पानी ठाकुर जी का सेवा में लगता है ना, कहां से पानी आता है पता नहीं आपको? कुआं से। उधर कोई मोटर नहीं, कुआं बहुत गहरा है कुआं, और कोई मोटर से वो खींचते नहीं है, मोटर यूज नहीं होता है। ठाकुर जी कुकिंग के लिए जितना पानी चाहिए ना, बर्तन साफ होता है, कुकिंग होता है, सो लोग खींचते हैं रस्सी में, वो खींचते हैं सब। और कुकिंग कैसे होता है? मिट्टी का घट, आप देखे ना मिट्टी का घड़ी में। और कुकिंग कैसे होता है? और लकड़ी से, लकड़ी पानी, कुआं का पानी। तो पानी आप जाएंगे ना, वो जो कुआं है पानी कम से कम 50 फीट नीचे पानी मिलता है, लेकिन वो 22 पहाड़ जो है ना, जो 22 स्टेप्स है, इसका ऊपर पानी आ गया। तो सब जगन्नाथ जी को प्रार्थना करने लगे, जगन्नाथ जी स्वप्न से बोले देखो ये गंगा प्रकट हुए। अब जाएंगे मंदिर का भीतर, पहले 22 पहाड़ जो है 22 स्टेप्स है, इसका बीच में एक स्टेप राइट साइड दिशा में, दाहिने दिशा में। हाँ नहीं, बंद नहीं किए, तब तो जगन्नाथ जी ने बोले ये गंगा प्रकट हुए है ना, उसको बंद करना संभव नहीं है, तुम ऐसा काम करो जाओ समुद्र की दिशा में जाओ। उस समुद्र की दिशा में गए, और जगन्नाथ जी बोले देखो समुद्र की दिशा में एक अलग पत्थर है, इसको ला, और वही पत्थर को लाकर इधर दबा दो, इधर रख लो, तब तो और गंगा जी प्रकट नहीं होंगे। तो वो पत्थर लाए समुद्र से और इधर इसको पैकिंग जैसा दे दिए, बंद कर दिए, तब तो गंगा जी बंद हुए। तो आप देखेंगे जो भक्त लोग प्रसाद लेकर वापस आते हैं ना, कहां से, मंदिर से, उधर थोड़ा प्रसाद देकर जाते हैं, देखेंगे आप कभी जाएंगे ना तो मार करना है, उधर क्यों देते हैं, उधर भी गंगा है, और एक स्थान है उधर भी एक गंगा है। कहां गंगा है? आप जाएंगे मंदिर का पीछे है वो एक पुलिस स्टेशन है, पुलिस स्टेशन का पास एक कुआं है, उसको परमानंद पुरी का कुआं बोलते हैं, एक वेल माधवेंद्रपुरी का शिष्य ईश्वरपुरी और ईश्वरपुरी का शिष्य परमानंदपुरी। ये परमानंदपुरी उधर भजन करते थे पुरी में, चैतन्य महाप्रभु जब थे ना सब लोग उधर ही थे, जितना बड़े बड़े संत संसार में सब गए थे पूरी, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु संकीर्ण। जीवन में सब कुछ मिलता है, पैसा मिलता है, सब कुछ मिल जाता है कर्म की बस से, लेकिन एक चीज नहीं मिलता है, इसके लिए कोशिश करना पड़ता है, वही साधु संघ। भक्त लोग का संघ के लिए हमको कोशिश करना पड़ेगा, ऐसा नहीं मिलते, और सब तो मिल जाता है। आप कहां भी इंडिया में रहिए, इधर भी रहिए, कहां भी रहिए, पैसा मिल जाएगा आपको, जितना मिलना है वो मिल जाएगा। भक्ति ऐसा नहीं होता, आपको करना पड़ेगा, कामना करना पड़ता है, साधु संघ के लिए आपको प्रार्थना करना पड़ेगा। इसलिए संसार में जितने बड़े बड़े संत लोग थे उस समय सब थे पुरी में, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु थे। भक्ति अकेला करना बहुत मुश्किल है, अकेला संभव नहीं, हमको संघ चाहिए, एसोसिएशन चाहिए, संघ चाहिए। संघ की वजह से भक्ति हम कर सकते हैं, नहीं तो ये बहुत खतरनाक है, कलयुग है। तो संघ हमको खींच कर रखता है, पकड़ कर रखता है। एसोसिएशन ऐसा होता है ना, संघ की वजह से हम आगे बढ़ सकते। और भगवान को यही प्रार्थना करना है, प्रभु जी मुझे अच्छे भक्त का, शुद्ध भक्त का संग दीजिए, जिसका कामना वासना कुछ भी नहीं है, जिसका मन हर समय आपका चरण कमल में है, वही भक्त का संग मुझे दीजिए। भक्त की, भक्तों की संग करेंगे तो भक्त बढ़ आगे आगे जाएंगे। वो तो गुरु भाई जैसा है, गुरु भाई हो गया ना, तो वो उधर भजन करते थे, चैतन्य महाप्रभु बार बार जाते थे उनको दर्शन करने के, भगवान है लेकिन भक्तों का दर्शन करने के लिए वो जाते थे, बहुत रेस्पेक्ट थे। वैष्णव पथ पर आगे बढ़ने के लिए हमको ये सबसे बड़ा सूत्र यही है, दोष हमारा भी है और दोष दूसरा लोक का भी है। इस जगत में आए इसका मतलब हमारा दोष कुछ है, कोई हम परफेक्ट नहीं है। कोई बोलता है मैं परफेक्ट हूं, तो अगर मैं परफेक्ट हो तो इधर क्यों आए हूं? थोड़ा थोड़ा बहुत कुछ दोष है, आज तो दोष नहीं है कल आएगा, ये जगत ऐसा ही। इसलिए हर समय चुप कर रहना है और सबको सम्मान देना है, तब तो भजन होता है। दूसरे को सम्मान नहीं देने से ठाकुर जी रुक जाते हैं, जब ठाकुर जी रुक जाते तो भजन कैसा होगा, भजन संभव नहीं, बहुत मुश्किल है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु बोले अमानी न मान दे न मान द, मान एक दान है, समझते ना आप, मान एक दान है, पैसा आप देते हैं, किसको पैसा देते हैं, इस जगत में सब कुछ देने का बाद सबसे बड़ा दान यही है, मान, मान दान। इसमें ठाकुर जी बहुत खुश हो जाते हैं, दूसरे को सम्मान दे रहे हैं, दूसरे को सम्मान मतलब भगवान को हम सम्मान दे रहे हैं, क्योंकि सबका अंतर में भगवान। चैतन्य महाप्रभु की शिक्षा यही है, महाप्रभु की शिक्षा यही है। महाप्रभु बार बार जाते थे परमानंदपुरी का पास, प्रणाम करते थे, बोलते थे आप ठीक है ना, आप ठीक है ना, लेकिन महाप्रभु को पता है उधर एक प्रॉब्लम है। परमानंदपुरी जहां रुकते थे, जो छोटे उनका भजन कुटीर था, उधर एक कुआं था, एक कुआं है छोटा, लेकिन पानी पीने के लायक नहीं, पीने का लायक नहीं, अलग टेस्ट है। तो महाप्रभु एक दिन गए, देखिए पुरी में कितना स्थान पर गंगा है, एक तो श्वेत गंगा है और दूसरा ठाकुर जी के चरण कमल पर गंगा है और तीसरा 22 स्टेप्स जो है ना इसमें भी गंगा है और चौथा इकुआ में भी गंगा प्रकट किए चैतन्य महाप्रभु। देखिए एक स्थान, एक तीर्थ स्थान पर कितने गंगा है। तो चैतन्य महाप्रभु ने बोले कि प्रभु जी आपका सब कुछ ठीक है ना, पानी कहां पीते हो, ये कुआं से पानी पीते हो? तो परमानंदपुरी ने बोला कुआं का बात मत बोलो, ये फालतू कुआं है, ये बेकार है, ये कुआं का पानी पीने का लायक नहीं है। महाप्रभु बोले क्यों, आपको इतना कष्ट करना पड़ता है पानी के लिए? मैं जगन्नाथ जी को प्रार्थना करता हूं, क्योंकि जगन्नाथ सर्व समर्थ है, आप ठाकुर जी को काल हम इस विषय में चर्चा कर रहे थे ना, ठाकुर जी सब कुछ कर सकते हैं। जैसे कोई बड़ा हॉस्पिटल आप गए हैं ना, बड़ा हॉस्पिटल है, क्लिनिक है, और उधर आप फेल हो गए, तो गए ना, और कहां आप इलाज होंगे? ये बड़ा हॉस्पिटल में हम एडमिशन किए हैं, जहां डॉक्टर है भगवान जगन्नाथ, और मंत्र है महामंत्र, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। ये दवाई है, सबसे बड़ा दवाई यही है। अरे डॉक्टर कौन है? भगवान कृष्ण और उनके साधु लोग है, डॉक्टर है। और ऐसे हॉस्पिटल में अगर हमारा इलाज नहीं होगा तो कहां होगा? इधर नहीं हुआ तो ये होपलेस कैसे है? अगर और कहां भी नहीं होगा, जो कुछ जीवन में है ना हम लोग का समस्या है, वो समाधान ठाकुर जी के चरण कमल आश्रय करने से, साधु लोग की सेवा करने से, उनका आदेश पालन करने से होता है, और कहां नहीं है। हम बोलते हैं ना ये प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम है, ठीक है, टिबूटी का बीच कुछ प्रॉब्लम है, भगवान का क्या प्रॉब्लम है? हमारे गुरु जी कहा करते थे, जैसे आप हॉस्पिटल जाते हो ना, हॉस्पिटल में देखेंगे तो कितना रोगी है, वो सब हल्ला गुल्ला करते हैं। आप अगर उन लोग का हल्ला गुल्ला सुनेंगे ना, आप सोचेंगे इधर कोई डॉक्टर नहीं। तो हम हॉस्पिटल गए क्यों गए हैं? डॉक्टर के लिए या पेशेंट के लिए? क्यों गए हम? डॉक्टर के लिए ना, इलाज होने के लिए गए हैं, डॉक्टर का बस गए ना हम हम रोगी के लिए नहीं गए। तो अगर रोगी को आप देखेंगे तो आप क्या करेंगे? बोलेंगे नहीं, ये हॉस्पिटल में एडमिशन नहीं होगा, इधर कोई डॉक्टर नहीं। इसे हम सब लोग रोगी हैं, डॉक्टर है ना प्रभुपाद जी है, भगवान कृष्ण है, उनको देखना है। कोई डिवोटी कुछ क्या कर रहा है, उधर कुछ कर रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि इस संस्था में, ये परंपरा में कुछ नहीं है, कभी ऐसा नहीं सोचना चाहिए। भगवान सर्वसमर्थ है, भगवान को प्रार्थना करना चाहिए, साधु गुरु लोग को प्रार्थना करना चाहिए, सेवा करना चाहिए। जो हमको इम्पॉसिबल लगता है ना, ये इम्पॉसिबल हमारे लिए है, क्यों? हम नहीं कर रहे हैं इसलिए हमको इम्पॉसिबल लगता है। कमजोरी हमारा है, कमी हमारा है, ठाकुर जी तरफ से कोई कमी नहीं। आप देख लीजिए, आप कहां भी जाइए, जो सोचता है ठीक है इधर आसोसिएशन अच्छा नहीं, आप कहां भी जाइए, कमी हमसे है, ठाकुर जी से कुछ नहीं है। ठाकुर जी दयाल हुए, कृपाल हुए, वो थे सत्य युग में, त्रेता में थे, द्वापर में थे, अभी भी है वही कृपाल। भजन हम नहीं कर रहे हैं, ठाकुर जी का सेवा हम नहीं कर रहे, ये हमारा कमी है। चैतन्य महाप्रभु ने यही बताया, मैं जगन्नाथ जी को प्रार्थना कर रहा हूँ, जगन्नाथ जी के चरण कमल में सब कुछ है, वो सर्व समर्थ है, वो अगर कृपा करेंगे ना, ये जल बहुत मधुर हो जाएगा, गंगा जी इधर ही प्रकट हो जाए। चैतन्य महाप्रभु ने इसे प्रार्थना की और वापस गए, चैतन्य महाप्रभु वापस चले गए। और कुछ समय का बाद भक्त लोग को ये फिर याद आया, चैतन्य महाप्रभु बोले थे ना गंगा प्रकट होंगे कुआं में, तो वापस आए, तो वापस आए आए और देखने लगे कुआं का पानी बिल्कुल बदल गया। भोगवती है ना गंगा, तीन विभाग हो गए, जब पतन हुए ना गंगा तो तीन विभाग, ये भूपृष्ठ में इधर गंगा, स्वर्ग में मंदाकिनी, और अधोलोक जो है नीचे लोक में भोगवती। तीन क्या बोले, जब गिरने लगे तो तीन विभाग हो गए गंगा, उनका धारा तीन विभाग हो गए, स्वर्ग में एक धारा गिरे उसको मंदाकिनी बोलते हैं, भूपृष्ठ में जो घिरे उसको हम बोलते हैं गंगा, और जो भीतर गए अधोलोक में तल सुतल अतल भोगवती, गंगा का तीन विभाग भाग, और भोगवती ने प्रकट हुए, गंगा ने प्रकट हुए, एक मान कितने हो गए पूरी में देखो, एक स्थान पर पंचकोश में कितना गंगा है, श्वेत गंगा है, 22 स्टेप पर उधर एक गंगा है, भगवान के चरण कमल में गंगा है, और परमानंद कुआं बोलते हैं, परमानंद पुरी का जो कुआं है उधर भी गंगा प्रकट हुई। और चैतन्य महाप्रभु ने यही बोले कि ये पानी को जो पी लेते हैं, जो भक्त लोग पीते हैं ना, अपने शरीर में कृष्ण प्रेम प्राप्त करेंगे, शरीर में भक्ति प्रकट होंगे। महाप्रभु ने यही वर दिए। जितने लोग वैष्णव लोग को पता है ना, जब जाते हैं वो पानी पीते हैं, ठाकुर जी की सेवा के लिए मंदिर में अभिषेक के लिए वही जल लेते हैं, क्योंकि गंगा की जल। तो पांच तीर्थ कल हम सुन रहे थे, तो तीन तीर्थ हम सुने, महोदधि स्वर्ग द्वार, और दूसरा श्वेत गंगा, और तीसरा कौन सुने हम? दो सुने शायद, चक्र तीर्थ सुने है ना, हाँ तीसरा। और चौथा है मार्कंडेय सरोवर। सरोवर का मतलब बहुत बड़ा तालाब। मार्कंडेय ऋषि उधर तपस्या किए थे, कभी पूरी जाएंगे ना। ये बाहर सब बाहर है, आप देख सकते हैं, एक सिर्फ भीतर है और सब बाहर है, मंदिर का बाहर है, आप देख सकते हैं। मार्कंडेय सरोवर बहुत बड़ा तालाब, बहुत बड़ा तालाब है। उनका पास मार्कंडेश्वर महादेव है, शिव जी है। मार्कंड मुनि पता है ना आपको, मार्कंड ऋषि मृकंड का पुत्र होता, द्वादश स्कंद में वर्णन है, मृकंड ऋषि का पुत्र था। मृकंड ऋषि पहले, उनका कोई लड़का नहीं था, शादी किया था, कोई लड़का नहीं था। मार्कंडेय ऋषि जो प्रकट हुए कैसे हुए देखिए, उनका कोई लड़का नहीं था पहले, और उनका चिंता भी नहीं था, लड़का क्या लड़के क्या, जो सेवा करता है भगवान को सेवा करता है उनके लिए भगवान ही सब कुछ है, भगवान ही लड़का है, ठाकुर सब कुछ है ना। हम वैष्णव लोग कभी दुखी नहीं बनना चाहिए, मेरा लड़का नहीं है, मेरा लड़की नहीं है, किसका, कोई हमारा भलाई नहीं करने वाले, हमारा भलाई कौन करेगा, गुरु और कृष्ण, दूसरा कोई हमारा भलाई नहीं कर सकता। ये एक मेटेरियल अटैचमेंट है, भौतिक है ना। भागवत यही बोल रहा है, लड़का अच्छा है या लड़की अच्छा है, आपका अगर लड़का हो गया तो अच्छा है या लड़की, हाँ इंडिया में लड़का हो जाता है ना बहुत खुश होता है, मेरा लड़का हो गया। कर्मी जीवन में लोग बोलते हैं ना, मेरा लड़का चाहिए, मुझे लड़का चाहिए। भाई लड़का हो या लड़की हो, लड़की अगर वो शादी करके जाएंगे, अगर लड़का अच्छा लड़का आपका हो गया तो वो भी शादी करके चले जाएंगे ना, हाँ नहीं, अगर शादी करके आपका पास रहे तो झगड़ा, अगर नहीं होगा तो आपका सेवा भी करेंगे, इसमें भला ही क्या है। हम भक्त लोग है ना, अगर वो अच्छा लड़का है ना, अच्छा लड़का अच्छा है या बुरा लड़का अच्छा है, मतलब मुझे बताइए। मैं ज्यादा भागवत बोलता हूँ इसलिए ज्यादा लीला बोलना मेरे लिए मुश्किल है। कौन सा लड़का अच्छा है आपके लिए? आपका लड़का है बहुत अच्छा स्वभाव के, और आपका लड़का है बहुत बुरा स्वभाव के, कौन सा लड़का अच्छा है? अच्छा लड़का। अगर अच्छा लड़का आपका पास है ना, आपका भजन नहीं होगा, ये मेरा लड़का है, मेरा लड़का सब, हर समय मन तो रहेगा लड़का के पास, आप घर कभी नहीं छोड़ेंगे, भजन कभी नहीं करेंगे। ये कौन बोल रहा है? भागवत बोल रहा है। ज्ञान लेना है भागवत से लेना है, दूसरा कोई शास्त्र है संसार में? हम कितना लीला सुन सकते हैं, लेकिन करना ही है सब। क्या करना है? सब भागवत से सुनना है, भागवत से पढ़ना है, और उसे ज्ञान लेना है। कदापत्यम वरंग मन्य सदर पितम सुचार पितम। आपको पता है ना कौन पंचवा स्कंद में शायद है, चौथा स्कंद में बैण बड़े महाराज पिताजी कौन थे? अंग थे ना, अंग का लड़का हुआ बैण, और बैण का पुत्र हुआ पृथु। अंग महाराज ने बहुत सोच रहा था कि मेरा लड़का बहुत बुरा हो गया, वो तो इतना बदमाश था कि बैण बहुत फाइटिंग कर, बच्चे लोग को पकड़ पकड़ कर फेंक देता था कुआं में, समुद्र में, तालाब में, बहुत बदमाश करता था। पिताजी तो तंग हो गया, घर छोड़कर चले गए। कौन? अंग महाराज। पर जब जा रहे थे तब ये श्लोक गान करते करते चले गए जंगल। सचमुच मेरा पहले ये भावना था कि अच्छा लड़का जो अच्छा पुत्र होता है ना वो अच्छा है, लेकिन नहीं नहीं बुरा पुत्र अच्छा है। क्यों? जो लड़का बुरा है ना वो घर को नरक जैसा बना देता है ना। नरक क्या है आपको देखना है। आपका अगर एक बुरा लड़का हो गया ना वो नरक कर देता है, शराब पीकर आता है इधर धमधमाम चलाता है, पैसा दो मारपीट कर हो गया नरक। तब अंग महाराज ने यही बोले, जब घर को नरक बना देता है तो आपको नरक में रहना है क्या? आपको घर छोड़ना ही है। जब आज आप घर छोड़ रहे किसकी वजह से? लड़का की वजह से। तो आज ये सोच रहे कि मैं घर क्यों छोड़ रहा हूं, मेरा लड़का अच्छा नहीं है, है ना, इसलिए मैं घर छोड़ दिया हूं और ठाकुर जी का भजन करने के लिए मैं जंगल जा रहा हूं। अगर आपका लड़का अच्छा हो, बहुत सुपुत्र है, तो आप कभी घर नहीं छोड़ेंगे नहीं छोड़ेंगे। मैं यही बात पर बोल रहा था कि कभी आप ये नहीं सोचना चाहिए कि मेरा लड़का है मेरा लड़की है मेरा ये कुछ नहीं है, जो भी है ठाकुर जी की इच्छा से। आप मत सोचिए कोई आपका भलाई करने वाले हैं, कोई हमारा भलाई नहीं करने वाले। कर्म फल हम की है ना, कर्म हम की है, फल किसको भोगना है? खुद को भोगना है। उड़िया में कहावत है ना, ये राइट हैंड जो कर्म करता है वो लेफ्ट हैंड नहीं रहता है, ये कहावत है। जो हम किए हैं हमको भुगतना पड़ेगा।
ठीक ठीक चुपचाप बढ़ना
जा। और यह मैं कहावत होता है, राइट हैंड जो कर्म करता है ना लेफ्ट हैंड नहीं लेता है, लेफ्ट हैंड जो कर्म करता है राइट हैंड नहीं लेता है। तो बाल हो, हमारा बाल बच्चा हो, कोई भी हो, पत्नी हो, कोई भी हो, ये हमारा कर्मफल को ढोकर लाए हैं, सुख दुख आपको नहीं दे रहे हैं। हमारा जितना सुख दुख प्राप्त करना है ना वो हमको सहायता कर रहे हैं। ये बहुत बड़ा फिलोसफी है, मैं अभी जितना ज्यादा नहीं बता रहा हूं, इतना सुनना है। पहले जमान में साधु लोग कभी भी, साधु लोग मतलब नहीं जो भक्त लोग थे ना, कभी शादी वगैरह करते थे ना, अगर लड़के हुआ कि लड़का हुआ वो इतना वरिड नहीं होते थे। अगर कुछ भी नहीं हुआ फिर भी वरिड नहीं होते, क्योंकि उनको पता है मैं जो कर्म किया हूं उसको भोगना पड़ेगा और मुझे सहाय करने वाला है तो भगवान और कोई नहीं मेरे। तो मुरकंड ऋषि का कोई लड़का नहीं था, वो सुबह सुबह निकले तो एक माता जी ने, एक नारी ने उनको देख लिया और बोलने लगा, अरे ये ईसा बाबा जी है, उनका कोई लड़का नहीं है, कोई संतान नहीं है। उनका मुख दर्शन में कर लिया तो आज का दिन बेकार हो गया। गांव में ऐसा है ना, इधर नहीं है, गांव में बहुत पकड़ते हैं लोग, इसका लड़का नहीं है लड़की नहीं है, उसका मुख दर्शन हो गया दिन बर्बाद हो जाएगा, मेरा काम नहीं होगा कुछ नहीं होगा। ऋषि को ऐसे बोल दिए। तब मृकंड ने सोचा, मैं इतना बड़ा ज्ञानी लोग हूं, अगर सब लोग मेरे बारे में ऐसे सोचेंगे तो कोई मेरे पास नहीं आएंगे, उसका कोई संतान नहीं है, तो मैं भजन साधु सब कैसे करूंगा, भजन कीर्तन कैसे करूंगा अगर मेरे पास कोई नहीं आएंगे। तब उन्होंने सोचा ठीक है मैं शिव जी को प्रार्थना करूंगा। गए, बहुत तप किए मृकंड ने, और शिव जी ने बोले देखो तुम्हारा लड़का नहीं है, भाग्य में कोई संतान नहीं है, लेकिन मैं दे रहा हूं मैं दे रहा हूं, लेकिन आपको याद रखना है जब 16 साल हो जाएगा ना उम्र जाएगा, तुम्हारा एक दोष है ना अपुत्रिक दोष, निसंतान है, दोष को भगाने के लिए मैं दे रहा हूं, लेकिन तुम्हारा भाग्य में नहीं है, मैं दे रहा हूं, ठीक है ले जाइए, 16 साल हो जाएगा ना उम्र जाएगा। और उनका संतान हुआ शिवजी की कृपा से, उनका नाम क्या है? मार्कंडेय। मृकंड का लड़का हुआ मार्कंडेय। मार्कंडेय वो बचपन से सब संस्कार हुआ, पढ़ रहा था वेद वगैरह सब कुछ पढ़ रहा था, जब बड़ा हो गया ना 16 साल हो गया तब माँ बाबा ने रोने लगे, सब रोने लगे, तो बोले पापा जी क्यों रो रहे हो, पापा क्यों रो रहे हो ना, इस साल में तुम्हारा शरीर छूट जाएगा, इस साल में तुम्हारा शरीर छूट जाएगा, तुम मरने वाले, तुम ब्रोकन रूल्स ने पूरा हिस्ट्री बनाए, उसको बता दिए, देखो देखो कैसे शिव जी की दया से मैं तुमको प्राप्त किया। तब उनका दिमाग में एक बुद्धि आया, किसका? मार्कंड ऋषि का। पिताजी अगर आपको लड़का मिलने वाले नहीं थे, शिवजी की दया से मिल गए, अगर वो शिवजी चाहेंगे तो मैं उनको उपासना करूंगा तो वो हमको जिला सकते हैं। आपके भाग्य में नहीं था तो दे दिए, अब मैं इसे भजन करूंगा शिवजी का, वो मुझे जिला देंगे। वो गए और शिवजी को उपासना करने लगे, पूजा करने लगे, महामृत्युंजय मंत्र सुने है ना, वो ही बोलने वाले थे। आजकल लोग ऐसा करते हैं ना, महामृत्युंजय मंत्र, मैं भी अमर बनूंगा। अरे तुम क्यों हो, कौन हो, वो कौन है? तुमको मरना है, वो तो अमर है। महामृत्युंजय मंत्र बोलने लगे और बहुत पूजा सेवा कर रहा था। जब 6 साल हो गया, कंप्लीट हो गया, तो जमराज दूत लोक ने आए। दूत लोक ने जब आए, वो देखे कि शिवजी को पकड़ कर रखे, वो भाग गए और जमराज को बोले हम उधर नहीं जा सकते क्योंकि शिवजी को पकड़ कर रखे और शिवजी के हाथ में त्रिशूल है। तब जमराज आए, वो जमराज आकर तो देख ले रखे कि मार्कंडेय ऋषि तभी भी पकड़ा है शिव जी को। जब जमराज ने पास डाला वज्र, उनका हाथ में वो वज्र फैला ना, और शिव जी महाराज ने पूरा उनका लिंग, आप भी जाइए पूरी में देखेंगे ना, वो लिंग जो है अभी तक है वो ऐसा ही है। वज्र गिरने का बाद जैसा हो जाता ना, पत्थर जैसा हो जाता है, कंकड़ जैसा, इधर इधर बहुत शाखा हो गए। और भक्त के लिए शिवजी मार्कंड ऋषि को जिलाने के लिए पूरा शरीर ऊपर ले लिए वज्र को और उनको आश्रय दे दिए। लेकिन पकड़ कर रहे किसको? शिवजी को। और सोच रहा था मैं कितना दिन पकड़ कर रहूंगा, जब छोड़ूंगा तब तो जमराज मुझे अटक करेगा, जीवन भर से पकड़ कर रह सकता हूं, शिवजी से कोई बड़ा है क्या? शिवजी से किस, क्योंकि वो देखा कि शिव जी भी ध्यान कर रहे हैं, तब सोचने लगा। वो तो ऐसा पत्थर को पूजा नहीं कर रहा था, वो तो साक्षात शिव जी को दर्शन कर रहा था। मार्कंड ऋषि ने, उन्होंने सोचा कि शिव जी जिसको पूजा कर रहे हैं ना, मैं इसको ही पूजा करूंगा। तब सात मन्वंतर लगा लिए ध्यान भगवान कृष्ण विष्णु का, और विष्णु से वर ले आए अमर बनने के लिए। वो द्वादश स्कंद में है ना, बहुत सुंदर प्रसंग है। इतना बड़ा ऋषि थे ना मार्कंड ऋषि, पूरा भजन करते थे, बहुत भजन करते थे। अरे इंद्र ने कामदेव को भेजा, तुम जाओ, कामदेव को भेजा ना, कामदेव है क्या, सब देवता है ना, काम का भी एक देवता है, कामना को देवता है। उनके पास 5 बाण है, उनका नाम भी है, और किसका किसका ऊपर कितना बाण छोड़ते हैं वो भी है शास्त्र में, पता है ना आपको। जो गरीब आदमी होते हैं ना, उनको 1 बाण छोड़ते हैं, गरीब आदमी खाना पीना को नहीं, वो ज्यादा लस्ट नहीं है, कहां खाना पीना को, सूखा रोटी नहीं मिल रहा है, वो क्या करेंगे, सुबह से शाम तक रिक्शा चलाते हैं, उनको 1 बाण छोड़ते हैं। और विद्यार्थी को 2 बाण, जो पढ़ाई करने वाले हैं विद्यार्थी हैं, उसको 2 बाण छोड़ते हैं, और विद्यार्थी को 2 बाण छोड़ते हैं, और तीसरा बाण भोगी जो है, जो भोगी लोग होते हैं ना, उनको 4 बाण छोड़ते हैं। 3 बाण किसको छोड़ते हैं, 3 बाण और किसको छोड़ते हैं, मैं भूल गया हूं, और 5 बाण छोड़ते हैं सन्यासी लोग को। जो साधु सन्यासी बन जाते हैं ना, उनको 5 बाण छोड़ते हैं, सन्यासी को 5 बाण, क्योंकि उनका काम यही है, उनको टेस्ट करना है। कामदेव का यही काम है। चौथा तीसरा बाण किसको छोड़ते हैं, चौथा बाण छोड़ते हैं भोगी को, जो ज्यादा भूख करता है उनको चार बाण छोड़ देते, और पांच बाण छोड़ देते सन्यासी लोग को। इसलिए कभी कभी लोग प्रश्न पूछते हैं ना, सन्यासी लोग का फंडम क्यों हो गया? भाई इसलिए हो गया, वो पांच बाण चला रहे हैं, तुम थोड़ा इधर उधर हो जाए तो गिर जाएंगे, इसमें क्या है? ये कामदेव का काम है। कामदेव आ गए, तू भगवान के पास आ गए, मर्कट ऋषि के पास। ये भगवान के भक्त बहुत बड़ा भक्त तप कर रहे थे, और बसंत को लेकर आए, सबको लेकर आए, नृत्य गीत हो रहा था। ऐसा आजकल पार्टी जैसा आप देख रहे हैं कुछ नहीं है, उनका सामने क्या क्या म्यूजिक नहीं है। और मार्कंड ऋषि का आश्रम पूरा बिल्कुल बदल गया। वो सोच रहा था इतना दिन में ध्यान कर रहा हूं, अब तो थोड़ा म्यूजिक बज रहा है, मुझे अच्छा लग रहा है। उनको कोई काम नहीं पैदा, काम पैदा नहीं हो रहा था उनका शरीर में। तो आंख खुला तो देखना लगे कि कामदेव है, बहुत नरिया है। और मार्कंड ऋषि ने शरीर से इतना सुंदर सुंदर अप्सरा को पैदा किए, उसको देख करो पागल हो गए, नारायण ऋषि जैसे वैसे पागल हो गए। कुछ विचलित नहीं हुए, कुछ विचलित नहीं, मन में बिल्कुल काम विकार नहीं था और क्रोध भी नहीं था, कुछ भी विकार नहीं था। वो तो भाग गए सब। कुछ दिन का बाद ये आए, भगवान ने आए और बहुत प्रशंसा किया, तुमने काम को जय की हो मार्कंडेय ऋषि, तुम काम को जय कर दियो, कोई काम का विकार नहीं, क्रोध का विकार नहीं, मैं तुझे बर देने के लिए प्रयास करता हूं, मेरा इच्छा है तुझे बर दूंगा, कौन सा बर चाहिए? तब तो यही बोले, प्रभु आपका माया क्या, मैं थोड़ा देखना चाहता। देखो ये कैसा उल्टा बात है, भगवान को देख लिया, माया को क्या देखना है? प्रभु आपका माया कैसा है, मुझे थोड़ा दिखाइए ना। ठाकुर जी बोले ठीक है, तुम देखना है, चलो। तो एक दिन वो गए मार्कंड ऋषि, ठाकुर चले गए, मार्कंड ऋषि उधर नहा रहे थे, आ गए, प्रलय का जल आ गए। अब सुने द्वादश स्कंध में है ना, पढ़ेंगे तो भागवत पता चलेगा, पूरा प्रलय हो गया। और उधर वो देख रहे थे, एक बहुत बड़ा नौका बोलते हैं ना, नाव, नाव है, और बहुत तेज हवा चल रहा था, पानी आ रहा था, और वो डुबके लगा रहे थे, कहां जाएंगे पता नहीं, भगवान की माया देखना है। कुछ कुछ नहीं था, नहा रहे थे, हो गया ब्लड, एनिहिलेशन पूरा आ गया। देखिए भगवान का कितना बड़ा शक्ति है। और वो पानी में वो ऐसे है, डुबकी लगाकर ऊपर जाते थे, नीचे आते थे, जाते जाते वो ही पूरी श्रीक्षेत्र में आए, इसलिए वो तीर्थ है मार्कंडेश्वर, वो सरोवर है, उधर शिव जी का वो लिंग है, अभी भी जाएंगे ना देखेंगे। और पेड़ है, क्या बोलते हैं, बरबद बोलते हैं ना, बरगट बेनियन बेनियन जुट रहे हैं, अभी भी है बरबद, अभी भी है उधर देखिए। उन्होंने वो पानी का भी तक, पूरा संसार में पूरा पानी ही पानी था, और तेज हवा चल रहा था, बहुत बड़े बड़े लहरें आ रहे थे। और मार्कंड ऋषि ने उधर ही देखे लक्ष्मी नारायण भगवान को, अभी आप जाएंगे ना मंदिर का भीतर है उबेर एंट्री, अभी भी है। और लक्ष्मी नारायण उनको बुलाए, आ जाओ इधर आ जाओ, एक शब्द सुने, आओ इधर आओ। तब गए, वो बेनियन जो ट्री है ना, पर्वत जो गच है, पेड़ है, उसका ऊपर गए, लग गए उधर। और उधर देखे, वटस्य पत्रस्य पुटे सयानम बाल मुकुंदम मनसा स्मरामि। ये बेनियन ट्री का एक लीफ है, पत्ता है, पत्ता के ऊपर कृष्ण, देखे ना वो पिक्चर, कृष्ण स्वयं है और खुद का अंगूठी को चूस रहा है, खुद पकड़कर छोटा बच्चा ऐसे। और वो बुलाए, आ जाओ मार्कंडेय ऋषि, तुम आ जाओ। छोटा लड़का वो उसको बुला रहे हैं, कृष्ण बुला रहे हैं। वो आए और कृष्ण ने मुख खोल दिए और भीतर मार्कंडेय ऋषि ने गए, और भीतर तो गए तीन ब्रह्मांड, पूरा सारे ब्रह्मांड को देखने लगे भीतर। देखो भगवान का कितना बड़ा माया है। तो भीतर देखने लगे और ढूंढने लगे भीतर और क्या है। तो भीतर ढूंढ रहे थे और सारे ब्रह्मांड सब कुछ देखे,
एक भीतर ठाकुर ने प्रश्वास लिए थे, श्वास लिए थे से, और छोड़ दिए तो मार्कंडेय फिर बाहर आ गए। तो बाहर आ गए तो धड़ाम गिर गए और देखे पानी वगैरह कुछ नहीं है, वो प्रलय वगैरह जल वगैरह कुछ नहीं है। तब रोने लगा, क्या है? तब सोचने लगे, अच्छा मैं ठाकुर जी को बोला था माया देखने के लिए, ठाकुर जी दिखा दिए माया क्या है। वो पूरी में वो देखा था, तब बोला कि मैं इधर ही रहूंगा आश्रम बनाकर। मार्कंडेय भगवान उधर ही है, कोई आप जाएंगे वो सरोवर में नहाएंगे, उधर ही शिव जी है जिसको पूजा कर रहे थे मार्कंडेय ऋषि, मार्कंडेश्वर महादेव। लोग जाते ना उधर नहाते हैं, समुद्र में नहाते हैं, चक्र तीर्थ जाते हैं, उधर भी वो जल है, चक्र तीर्थ, उधर एक चक्र है। आप जाएंगे ना देखेंगे, उधर जो पानी है ना वो पुजारी लोग छिड़काते हैं, इसमें आपको नहाना है। दो, तीसरा श्वेत गंगा, चौथा ये है मार्कंडेय सरोवर, और पांचवा और एक है रोहिणी कुंड, और कोई कोई इंद्र सरोवर बोलते हैं, लेकिन रोहिणी कुंड भी है तो मंदिर का भीतर है। एक्चुअल जो रोहिणी कुंड है ना वो भी गंगा है, वो बहुत बड़ा, बहुत पीछे की बात है, बहुत बड़ा बात ही हुआ है। गल्लो माधव जब शासन कर रहे थे उस समय ये बालू में वो बहुत बड़ा कुंड था, वो पूरा भर्ती हो गया, बंद हो गया वो कुंड, उसका एक स्वरूप ऐसे नकल जैसे रखे हैं रोहिणी कुंड, वो भी एक तीर्थ है। रोहिणी कुंड पहले ब्रह्मा जी जब आए ना, जमराज भी आए थे, आपको पता है ना, इसका बाद हम सुनेंगे। जहां धाम होता है वहां शिव जी है, दिग्पाल उनको बोलते हैं, वृंदावन में है कि नहीं, चकलेश्वर महादेव है, गोपेश्वर महादेव है, हर जगह में कहां भी जाइए धाम, जहां भी धाम है ठाकुर जी का शिव जी रहते हैं, शिव जी का यही काम है, वो प्रोटेक्टर है। अरे देवी रहते हैं, देवता रहते हैं, शिव जी रहते हैं। पुरी में बहुत शिव है, बहुत शिव है, लेकिन पांच शिव है वो बहुत प्रसिद्ध है। ठीक है, मैं रोहिणी कुंड के बारे में बोल रहा था, इसका बोलने के बाद एक लीला याद आ गया। ब्रह्मा जी जब आए देखने लगे, क्योंकि आए थे प्रतिष्ठा करने के लिए, देखिए पानी है उधर, एक कुंड है, सरोवर है, छोटा सरोवर है, और ब्रह्मा जी ने देखा तो एक कौवा थे वो गिर गए और चतुर्भुज हो गए। अभी आप जाएंगे ना वही रोहिणी कुंड का पास एक पत्थर है भीतर, इसमें कौवा का चार दो 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 पैर उधर है, और दो पैर शायद दो पैर है, चिन्ह है अभी तक, और पास में एक विष्णु है। वो कौवा जो चतुर्भुज हुआ था ना उनका एक मंदिर है, वो विष्णु स्वरूप से पूजा पा रहे हैं पास में। वो पानी कहां का पानी है पता है आपको? वो ये गंगा जल है, करण सागर का जल है, पुराण में लिखा है। देखिए एक एक तीर्थ स्थान पर कितना ठाकुर जी का महिमा है, इसलिए पांच तीर्थ प्रसिद्ध तीर्थ है। और इसको छोड़कर शिव जी का बात मैं बोल रहा था कि पांच शिव है, प्रसिद्ध पांच शिव है। एक है लोकनाथ, जगन्नाथ जी को वो प्रोटेक्ट देते हैं उस जगन्नाथ जी की लीला क्षेत्र को सुरक्षा रखने के लिए, ये पांच प्रसिद्ध शिव है। लोकनाथ सुने हैं ना आप? लोकनाथ, लोकनाथ रोड बोलते हैं। ये कहावत है कि राम जी ने इसको प्रतिष्ठा किए थे। राम जी जब सीता माँ को ढूंढने के लिए लंका जा रहे थे तो पुरी पास आए, उधर एक छोटा गांव था, तो राम जी उस समय बहुत, क्योंकि तो राजा थे, लक्ष्मण थे पास में, तो राजा राजवंशीय थे ना, तो मानव लीला कर रहे थे, वो शिव जी को बार बार पूजा कर रहे थे उस समय हम लोग को सिखाने के लिए। तो वो गांव में, वो एक सबर गांव जैसा था पास में, जहां अभी लोकनाथ है, छोटा गांव था, और वो आए तो देखने लगे इधर शिव जी का मंदिर कुछ नहीं है, एक लौकी मंगाए लौकी आपको पता है ना, आप वृंदावन लौकी नहीं देखे हैं आप, क्या बोलते हैं हिंदी में लौकी बोलते हैं ना, लौकी, लौकी से ये अपभ्रंश होकर हो गया लोकनाथ, लौकीनाथ। ये कहावत है परंपरा से, ये लौकी को लाए राम जी ने। राम जी बोले कुछ नहीं है पूजा करने के लिए शिव जी के लिए, ठीक है इधर तो कोई मंदिर नहीं है, तुम एक लौकी लाओ, क्योंकि लौकी का जो साइज है कैसा है, शिवलिंग जैसा है कि नहीं। राम जी ने बोले मुझे शिवलिंग जैसा कोई चीज चाहिए। तो गांव के लोग बोले कुछ नहीं है इधर लौकी है, तो दे दो एक लौकी। एक लौकी दे दी और राम जी ने इसको पूजा की। जब राम जी पूजा कर दिए तो क्या हो गए, सिद्ध सिद्ध हो जाएगा, और क्या है भगवान पूजा कर रहे हैं। और वो लौकी को जब पूजा कर दिए तो साक्षात पत्थर जैसा हो गए, लिंग जैसा हो गए। लोग देखने लगे ये नहीं सुख रहे थे, ऐसे ही ऐसे रहने लगे। राम जी पूजा करके गए, तब गांव का आदमी सोचने लगे राम जी जिसको पूजा किए हमको पूजा भी करना है। आप अभी जाएंगे ना, कभी उनका दर्शन नहीं होता है, लोकनाथ का दर्शन कभी नहीं मिलेगा, वो पानी का भीतर है, बहुत भीतर है। एक दिन पानी से ऊपर आते हैं, ऊपर क्या पानी को निकालना पड़ता है शिवरात्रि का दिन, नहीं तो पानी का भीतर बहुत गहराई में है, बहुत गहराई में, कम से कम 12 फीट गहराई में है ग्राउंड लेवल से नीचे। आप जाएंगे ऐसे ऐसे भीतर भीतर जाएंगे, फिर मंदिर का भीतर जाएंगे, फिर मंदिर का भीतर भीतर ठाकुर जी। ओडिशा में कितना शिव मंदिर में देखा हूं, कम से कम 100 से ज्यादा शिव मंदिर मैंने देखा हूं जो स्वयं प्रकट है, कोई प्रतिष्ठा नहीं किया, उसको स्वयं बोलते हैं, वो खुद क्या बोले मिट्टी से निकले। उड़ीसा से 100 से ज्यादा मैं देखा हूं, किसको भी पूछो ये कौन सा है, ये प्रकट हुए। एक मंदिर में, एक ट्राइबल एरिया में जाता हूं, उधर शिव जी है, मैं 7-8 साल गया हूं भागवत कथा करने के लिए, पूरा ट्राइबल एरिया है, जंगल का पास बहुत पहाड़ है, उधर एक शिव जी है। वो शिव जी कैसे आए थे आपको पता है आपको एक शिव भक्त था, घर में तो पूजा करने के लिए कोई, गांव में मंदिर नहीं था और कुछ भी नहीं था, सिर्फ शिव जी को चिंतन करके बेलपत्ता वगैरह देता था। वो बैलगाड़ी लेकर गया था जंगल, वो बैलगाड़ी लेकर जंगल जाते थे, जंगल में जो लकड़ी वगैरह है ना बैल में लाते थे, बैलगाड़ी में, वो बैलगाड़ी का पीछे लकड़ी रखकर वो लाते थे, इसमें एक पत्थर लग गया, लकड़ी से पत्थर लग गया, पता नहीं कोई लगाया ना, इसे लग गया, इसे मैग्नेट चुंबक जैसा ना, वो खिसते खिसते ले आए। वो गांव से भीतर जाने से पहले एक बहुत बड़ा जमीन था, वही जमीन पर रह गया। वो बीच बीच में वो बैल नहीं चल रहे थे, वो सोच रहे थे इतना भारी कैसे हो जाता, वो देखते थे कि पीछे एक पत्थर है, वो पत्थर को फेंक देते थे, फिर 2 किलोमीटर चले आते थे, फिर देखते थे वो पत्थर आकर फूल लग गए, वो फिर 1 किलोमीटर आ जाते थे, फिर देखते फिर वही पत्थर फेंक देते थे, वही पत्थर आकर फिर लकड़ी से लग जाते थे। वो बार बार फेंक कर फिर सोचने लगे ये पत्थर क्यों लग रहा है। वो पत्थर को लाए और गांव के सामने जब आ गए, गांव के सामने जमीन थे, उधर ही रुक गए और रात में सपने में बोले तुम मेरा भक्त हो ना, इधर छोटा मंदिर बनाओ, मैं इधर ही रहना चाहता हूं। कितना शिव जी ऐसा है, विष्णु मानव यथा संभव, बहुत भगवान बड़ा भक्त है, दयालु भी है, और शिव जी की 2 कृपा है याद रखना है, एक सकपट एक अकपट। किसको कृपा करते हैं, कपट कपट से कृपा करते हैं, जो पैसा चाहते हैं शरीर सुख चाहते हैं उसको कपट करते, सही कृपा नहीं, भक्ति नहीं देते। और अकपट जो वैष्णव लोग हैं, ठाकुर शिव जी की पूजा करते हैं ना, उसको निष्कपट कृपा करते हैं, वो बता देते हैं तुम जाओ वैष्णव बनो। कितना भक्त को बोले तुम जाओ वैष्णव बन जाओ, तुम्हारा गुरु यही है, तुम ठाकुर जी का भक्ति करो, बोलते हैं शिव जी, है प्रमाण। हमारा गुरु भाई है, गुरु से दीक्षा लिया थे, उस शिव जी का पास पांच छह राती, छह रात तक कुछ नहीं खाए, वही गांव में जहां मैं पत्थर बोल रहा था वही गांव में पड़े, वो ट्रैवल एरिया आदमी का, वो टीचर था, उनका कोई प्रॉब्लम था, वो गांव में ऐसा फास्टिंग करते हैं शिव जी का मंदिर में, सिर्फ बेलपत्ता और पानी पीते हैं और ऊपर कर रहते हैं, और शिव जी बोलते हैं, और शिव जी ने उनको बोला तुम भुवनेश्वर जाओ, उधर मंदिर है, इसका मंदिर है, इसका मंदिर नहीं बोले, इसे एक साधा मंदिर है, उधर एक बाबा जी है, उनसे दिखा लो, तुम्हारा सब प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। वो ट्रैवल एरिया का आदमी था, शिव जी ने उनको बोला था, कई आदमी से शिव जी का एक दया होता है, इसको अकपट दया, वो भक्ति देने के लिए जो वैष्णव लोग पूजा करते हैं उनको भक्ति देने के लिए बोल देते हैं, जाओ सही से उपासना करो, पूजा करो, बोल देते हैं। श्री क्षेत्र में और एक है लोकनाथ, दूसरा है कपाल मोचन, एक शिव प्रसिद्ध शिव मंदिर कपाल मोचन, ब्रह्मा जी पुराण की बात है, ब्रह्मा जी का कितना मुख था, हाँ चार नहीं पहले पांच था, पहले पांच था, कोई 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 बोलते थे कि वो जब वेद पढ़ते थे एक बार शिव जी सुन रहे थे, थोड़ा भूल हो गया, शिव जी ने एक थप्पड़ लगा दिए पिताजी को, तू वेद पढ़ रहे हो थोड़ा भूल कर रहे हो, एक ऐसे थप्पड़ लगाया कि एक गर्दन पूरा गिर गया, वो तो बहुत क्रोधी हो जाते हैं। और कोई कोई बोलते कि जब सरस्वती कन्या के पीछे भागने लगे ना तो शिव जी उठकर उनको लगा एक थप्पड़ ब्रह्मा जी को, तो वो गर्दन जब गिर गया शिव जी के हस्त में लग गया, हाथ में लग गया, पाप, पिताजी को मार रहे हैं ना, पिताजी को मानना नहीं चाहिए, तो गर्दन जब गिर गया हाथ में लग गया, शिव जी कितना कोशिश कर रहे थे हाथ से निकालने के लिए, कपाल, इसको कपाल बोलते हैं ना, और मोचन, ये मोचन नहीं हो रहा था शिव जी के लिए, कितना व्रत किए, कितना तप किए, कितना धाम गए, हाथ में वो नहीं निकल रहा था, किसका मस्तक, ब्रह्मा जी का मस्तक, तो घूमते 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 वो आ गए पूरी, और सब तीर्थ जा रहे थे और सब सब जगह में तप कर रहे थे कि हाथ कैसे निकल, हाथ से कैसे वो निकल जाए, नहीं निकल रहा था, जब पूरी आ गए पूरी में बैठकर तप करने लगे तो हाथ से निकल गए, तब शिव जी ने बोला यही श्रेष्ठ धाम है, इधर ही रहना है मुझे, बाप से मुझे छुटकारा मिला है, जब कपाल मोचन हुआ था इसलिए उनका नाम पड़ा कपाल मोचन, ये महादेव है उधर। शिव जी को कोई भी वैष्णव लोग पूजा, जैसे गोपी लोग गोपीश्वर महादेव, सिर्फ भक्ति के लिए पूजा करना है तो सब मिल जाए, शिव जी बहुत बड़ा दयालु है, कभी अपराध नहीं करना चाहिए और कभी मांगना भी नहीं चाहिए, शिव जी मुझे पैसा वगैरह दे दो, हम लोग इसलिए शिव जी को सेपरेट पूजा नहीं करते, पता है ना आपको, हम लोग का भरोसा नहीं है ना, किस महामंत्र कर रहे हैं और किसको बोल दो कि मेरा बहुत प्रॉब्लम है, वो बोलता है ठीक है नरसिंह मंत्र करो, क्या नरसिंह कवच उसको पढ़ो, देखो हमारा कितना कमजोरी है, वही भी मंत्र है महामंत्र ही मंत्र है, महामंत्र से बड़ा कोई है क्या, थोड़ा कुछ प्रॉब्लम आ जाता है ठीक है नरसिंह कवच करो, नरसिंह कवच करो, बहुत कमजोरी आदमी हम लोग के, भरोसा नहीं, अरे महामंत्र में सब मंत्र है, तो अगर शिव जी का पूजा हम जैसे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद महाराज ने सब मंदिर में शिव जी रखे थे प्राय मंदिर में, तो प्रभुपाद ने इसको अडॉप्ट नहीं किया, क्योंकि प्रभुपाद वो एम्पावर्ड सोल है, उनको पता है अगर मैं शिव जी रख दूंगा ना ये कोई हरे कृष्ण महामंत्र जब नहीं करेंगे सब शिव शिव करेंगे, सब पता है उनको, बहुत कमजोरी है हम लोग, इसलिए एसेंस दे गए कि हरे कृष्ण महामंत्र करना, हरे कृष्ण महामंत्र में सब मंत्र का शक्ति है, आपको पता है ना भगवान का जितना नाम भी है, नारायण है गोविंद है नारायण मत्स्य कूर्म बराह, जितना अवतार का नाम जितना देवर देवी का नाम सब, अगर भगवान श्री कृष्ण शरीर में भगवान विश्वरूप में दिखाए है ना, विश्वरूप में सब उधर देवता है देवी है सब कुछ है, तो उनका नाम में सब कुछ नहीं है, जो महामंत्र करते दूसरा कोई मंत्र का जरूरत नहीं, हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम, ये सब मंत्र सार है महामंत्र, इसलिए बोले महामंत्र। और एक जमेश्वर है, इसको कपाल मोचन बोलते हैं। जमेश्वर अलग है, जमेश्वर महादेव, जमेश्वर। जमराज जी ने आए थे ब्रह्मा जी के पास कंप्लेन की, क्या मैं सुना उस श्रीक्षेत्र में पूरी में जो शरीर छोड़ देता है वो जमपुर नहीं जाएगा। तब स्कंद पुराण में है, ब्रह्मा जी ने बताया, बाबा सब जगह में तुम्हारा नाटक चलता है, इधर मत नाटक करो, इधर तुम्हारा नाटक नहीं चलेगा। इधर कोई भी शरीर छोड़ता है ना वो मेरा पास जाता है, इसलिए उड़ीसा लोग का अभी तक विश्वास है। कोई मर जाता है ना, चाहे कितना बड़ा पापी है, उसको ले आते हैं, उस स्वर्ग द्वार ले आते हैं, उधर वो जला देते हैं, वो सोचते हैं मुक्ति हो गया। पुराण में ऐसा ही है, विश्वास है लोग, कोई मरता है ना लोग बोलते हैं नहीं उसका उद्धार हो गया। आपको पता नहीं है भारतवर्ष में जितना पूरी वृंदावन मायापुर में जितना बिल्डिंग है ना, वो हाफ बिल्डिंग पूरा खाली है, वो सिर्फ रखे मरने के लिए। रिटायर्ड हो जाएंगे, बुढ़ा हो जाएंगे, तब जाएंगे उधर भजन करेंगे, मरेंगे। और सिटी में जितना फ्लैट देख रहे हैं ना, इधर जीने के लिए, रोटी मिलेगा, पैसा मिलेगा, जीने के लिए ये कमरा है। और भारतवर्ष में जितना फ्लैट है सब धाम में, मरने के लिए। अच्छा से मरण कैसे हो जाए भगवान के धाम पर। लेकिन हमारा परंपरा ऐसा नहीं है। प्रभुपाद जी कहा करते हैं, हमारा चेतना कहां रहता है, ये पुट अच्छी देना चाहिए। मरने के समय हम विदेश में हो चाहे धाम में हो, अगर ठाकुर जी के चरण कमल में मती है, गुरु वैष्णव चरण कमल में मती है, हरिनाम में मती है, तो कहां भी है वही गति मिलेगा। धाम में हम क्यों रहते हैं, इधर ज्यादा फैसिलिटीज है भजन करने के लिए। और धाम में जाएंगे उधर ही बदमाश करेंगे, भजन नहीं करेंगे, उधर पिज्जा पास्ता खाकर बस मस्ती करो, ये क्या है। धाम का मतलब यही है, धाम का मतलब है ये भोग कमाना, भजन बढ़ाना, इसलिए हम धाम जाते हैं। धाम का मतलब टूर नहीं है, चलो उधर खाओ अच्छा प्रसाद मिलता है, दबाओ उधर, ये क्या है। धाम में पहले बहुत बड़ा बड़ा, मैं आप जगन्नाथ जी एक लीला याद आ गया, जमेश्वर जब जी आया था ना, तब ब्रह्मा जी ने बोला देखो तुम्हारा नाटक बाजी इधर नहीं चलेगा, इधर जो भी मरता है ना सीधा बैकुंठ जाता है। मंदिर, पूरी मंदिर के आसपास कितना आश्रम है आपको पता है, मठ, मठ बोलते हैं उड़िया में, मठ, उसे बड़े बड़े संत लोगों ने बनाए थे सिर्फ भजन करके शरीर छोड़ने के लिए। मंदिर में धाम में रहने का मतलब यही है, दूसरा एक्टिविटी जीरो, सिर्फ भजन और सेवा, नहीं तो धाम अपराध लग जाता है पीछे में। एक तांत्रिक थे, जगन्नाथ जी की लीला है आपको शायद पता होगा कि नहीं, वो बहुत बड़ा तांत्रिक, वो जगन्नाथ जी मानते थे नहीं, तंत्र पता है ना आपको, बहुत बड़ा भारतवर्ष में सबसे बड़ा तांत्रिक होते उस जमाने में। वो कर्णेश्वर ऐसा थे उनका नाम, वो आए, वो जब आए तो ठाकुर जी नहाने का बाद 15 दिन भीतर रहते हैं ना, स्नान पूर्णिमा से रथ यात्रा तक 15 दिन भीतर रहते हैं, उस टाइम पर हुआ है। करनाम गिरी उनका नाम था, करनाम गिरी बहुत बड़ा तांत्रिक, वो आए, वो आकर बोलने लगे कि वो सुने कि सब लोग पूरी आ रहे हैं, मैं जाऊंगा देखूंगा क्या वो लकड़ी को पूजा कर रहे हैं, वैसे आए थे। वो आए जब देख मंदिर बंद है, तांत्रिक लोग का बहुत ढमंड होता है ना, बहुत ढमंड दिखा है, तो मंदिर क्यों बंद किया हो, पुजारी लोग को बुलाए, क्यों बंद किया हो, खोलो मैं दर्शन करूंगा। वो बोले नहीं नहीं अभी, आपको पता है ना जो वो 15 दिन जगन्नाथ जी को दर्शन करते हैं वो नरक जाते हैं। हमारे भारतवर्ष में किसका छोटा ठाकुर है ना उसे बंद कर, 15 दिन के लिए सुला देते हैं, तुम सो जाओ। सिर्फ पुजारी को देखना है और दूसरा किसी को नहीं, भक्त को नहीं, सिर्फ पुजारी देखना है। और 15 डेज पूरा ठाकुर जी बोल रहे हैं ये 15 दिन मैं दर्शन नहीं दूंगा, कोई नहीं देखता। एक बार एक कथा है, एक बंगाल का एक बहुत बड़ा भक्त है, भक्त नहीं बहुत पैसा वाला है, वो एक पंडे को दे दिए पैसा, तुम मुझे थोड़ा दिखा दो भीतर। वो रात में ले गए उनको दिखाने के लिए, वो थोड़ा देख लिया ठाकुर जी का झांकी, वो 15 दिन का बीच में नहाने का बाद और यथात्र का बीच जो 15 दिन उसको अणसर घर बोलते हैं, ठाकुर जी अणसर में रहते हैं, भीतर पूरा रहते हैं। वो आदमी देख लिए और श्री मंदिर के बाहर आ गए तो इतना बड़ा रोग हुआ, ब्लड वोमिटिंग किया, मर गए। ठाकुर जी मना किया, मुझे नहीं देखना है। जैसे हम लोग पुजारी है ना, जो जगन्नाथ का पुजारी है वही देखता है, दूसरा पुजारी हम नहीं जाते हैं, हमारा मंदिर में जैसे पूजा होता है वो अलग रहते हैं बिल्कुल, उनका जो पुजारी है वही सेवा करते हैं। ठाकुर जी यही बोले, लेकिन ये करनामगिरी जो थे तांत्रिक थे ना, वो बहुत फटकार लगाने लगे, ये दारू है, उनको क्या हो गया है, बुखार हो गया है। बोलते हैं ना पंडाल लोग बुखार हो गया, नहाए हैं ठाकुर जी बहुत नहाए हैं, वो बुखार हो गया। ये ट्रेडिशन, ये अंधा ट्रेडिशन नहीं, ये परंपरा है ठाकुर जी का, विग्रह का लीला है ना, ठाकुर जी ऐसे किए हैं। एक कुआं है, सिर्फ वही कुआं का पानी आता है नहाने के लिए, एक दिन के लिए, सालों भर एक कुआं पूरा सील होकर रहता है, इसको सोना कुआं बोलते हैं, गोल्डन वेल उसका नाम है, यही सोना कुआं। और 108 कल्स में पानी लाता है और इसको जगन्नाथ जी नहाते हैं, और उसका बाद एक दिन, वही एक दिन का बाद वो कुआं पूरा बिल्कुल बंद होकर रहता है, तो वो पानी नहाने का बाद जगन्नाथ जी को ठंडा हो जाता है। और मेडिसिन देने के लिए सिर्फ 15 दिन के लिए मेडिसिन होता है, आयुर्वेदिक मेडिसिन, वो डॉक्टर भी आयुर्वेदिक डॉक्टर भी है। ठाकुर जी सेवा ये एक सेवा परिपाटी है, वो सोचा ये अंधा परंपरा है, क्या है ठाकुर जी को बुखार होता है थोड़ा खोलो, वो जबरदस्ती के, तब बोले नहीं नहीं आप जाइए गजपति महाराज अगर बोलेंगे ना हम खोल देंगे। उस समय गजपति महाराज का और एक पैलेस था ट्राइबल एरिया में, वो जंगल का बीच, वो कभी कभी उधर जाते थे, बहुत भजन करने के लिए वो थोड़ा दूर चले जाते थे। वो तांत्रिक के बोले तुम जाओ गजपति महाराज को बोलो, अगर गजपति महाराज बोलेंगे तो हम मंदिर खोल देंगे। पंडित लोग बोले, तो गजपति महाराज के पास कैसे गए आपको पता है, वो इतना बड़ा तांत्रिक थे, ये बहुत बड़ा बेनियन ट्री का ऊपर चढ़ गए, चाणा है ना, थोड़ा चाणा ले गए और एक एक चाणा मुख में डाले और बोले प्रगट चलो, और पेड़ जैसा फ्लाइट जैसा चलने लगा, सब देख रहे थे, वो इतना बड़ा तांत्रिक थे। और कुछ मिनट में पहुंच गए गजपति महाराज के पास और बोलने लगे ये क्या परंपरा है, क्यों जगन्नाथ को बंद कर रखे हो, लकड़ी का है, बुखार होता है, एक तमाशा तुम कर रहे हो, खुलो। ये बोले भाई ये तो मेरा शक्ति का बाहर का चीज है, ये हमारा परंपरा है, जगन्नाथ जी का परंपरा, तुम आओ पहले मंदिर को, श्री मंदिर में आ जाओ तो उधर देखा जाएगा ये परंपरा है कि अंध परंपरा है। तब गजपति महाराज आने से पहले वो फिर वही पन्न ट्री पे ऊपर चढ़ गए चले आए, और गजपति महाराज ने घोड़े में आए पीछे पीछे, वो आने से पहले गजपति महाराज आने से पहले गजपति महाराज ने बोले अगर तुम्हारा तंत्र शक्ति है तो तुम शुरू करो जगन्नाथ जी का पास जाओ। तो वो जबरदस्ती पंडा लोग जाते हैं ना भीतर, उसको दैतापति बोलते हैं, वो 15 डेज जो सेवा करते हैं ना उसको दैतापति बोलते हैं। उनका पीछे पीछे जाने लगे कौन, वो तांत्रिक करनामगिरी, वो पीछे पीछे जब चांद वो भीतर गए तो भीतर देखने लगे भीतर कुछ नहीं, जगन्नाथ है उनको कुछ नहीं दिखाई दिया। और एक जीत देखे कि 8 कोणा में 8 नारी है, बहुत ब्यूटीफुल वुमेन वो खड़े हैं और उनको देखकर हंस रहे हैं। करनामगिरी को देखकर हंसी उड़ा है, जगन्नाथ उधर है, पंडे लोग गए हैं सेवा करने के लिए, उनका पीछे वो जा रहे हैं, पीछे पीछे जा रहे हैं, उनको कुछ दिखाई नहीं। फिर गए, फिर वापस आए, बोले पंडे लोग गए पानी वगैरह लेकर सेवा करने के लिए, वो जहां गए मैं वहां गए, मैं वहां गए लेकिन उधर कोई नहीं। फिर भीतर फिर बाहर आए और मंदिर बंद हो गया, तब तो एक छोटा क्या बोले होल्स है, छोटा कणा है उसका भीतर, वो सोचा कि मैं तंत्र शक्ति प्रयोग करूंगा, एक बम्बल भी होकर गए, दरवाजा भीतर बंद हो गया ना, पंडाल लोग बंद कर दिए, छोटा कणा था उसका भीतर वो बम्बल भी होकर गए, करनाम गिरी, भीतर जब गए ठाकुर जी को पता ये तंत्र शक्ति प्रयोग कर रहे हैं, जो आठ नारी थे वो एक कमल को पकड़कर रखे थे, वो कमल में इतना सुगंध आ रहा था, वो बम्बल भी गए और कमल के भीतर घुस गए, तो घुस गए तो छटपटाने लगे, वो इतना बड़ा तंत्र तांत्रिक था कि बम्बल भी बन गया, मधुकर बन गया और लग गया उपत्ता में, लग गया तो हल्ला गुल्ला करने लगे, तो वही बम्बल भी जैसे मुंह गु करते वैसे ही करने लगे, और जगन्नाथ भगवान कुछ नहीं दिखे, कुछ नहीं दिखे, और इतना कष्ट हो रहा था, वो बोलने लगे जगन्नाथ मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, और दूसरा बार मैं कभी ट्राई नहीं करूंगा, मुझे छोड़ दो, मैं भीतर नहीं आऊंगा, तो ऐसे बहुत रो रहे थे, उनको लगा कि कोई उनको पुश कर रहे हैं, ऐसे उठा रहे हैं, और उठा दिए और वही होल में वो बाहर चले आए, आकर धड़ाम कर गिर गए, उनका स्वरूप हो गए, तांत्रिक स्वरूप हो गए और गिर गए, और उनको इतना कष्ट हुआ था अभी बोल रहे हैं। उसी समय में गजपति महाराज आए, तो गजपति महाराज ने बोले क्या हो रहा है आपका, जगन्नाथ जी का दर्शन हो गया? बोले नहीं नहीं, मैं अभी कभी और दर्शन करना मुझे नहीं है, मुझे पता है उधर है। उन्होंने एक शिव मंदिर में, वो शिव भक्त थे, आप अभी भी जाएंगे ना, वो पास है मंदिर का थोड़ा आगे, करनामेश्वरा, वो गजपति महाराज के बोले मुझे छोटा एक जमीन दे दो, इधर एक मैं मठ बनाऊंगा, मैं और कहां नहीं जाऊंगा, मुझे और तंत्र प्रयोग करना नहीं है। उधर एक शिव जी का प्रतिष्ठा किया, अभी भी वो है करनामेश्वर महादेव। बहुत लीला है जगन्नाथ, कई शिव मंदिर है, कितना मंदिर, कितना लीला पूरा, क्योंकि कलयुग में वही तो भगवान है ना, लीला क्षेत्र है पूरी। तो हम पांच शिव के बारे में सुन रहे थे ना, कौन कौन, पहले कपाल मोचन, दूसरे सुने जमेश्वर, और तीसरे लोकनाथ, और चौथा है मार्कंडेश्वर, और एक है नीलकंठेश्वर, नीलकंठ समुद्र मंथन का बाद ठाकुर जी पिए था ना बीस, गला नील हो गया था, नीलवर्ण हो गया था, वो भी उधर है। पांच एक प्रसिद्ध शिव मंदिर है, शिव जी देवी लोग भी है, उनका बात नहीं बोल रहा हूं, देवी लोग भी, उनका भी महिमा सब कहां कहां, और हनुमान जी कई जगह में हनुमान है, एक हनुमान है उसको कांड पता हनुमान बोलते हैं, कान पत, इसको कान बोलते हैं, पाता मतलब ऐसे, उसका कान समुद्र की दिशा में, पहले उस समुद्र में इतना आवाज आ रहा था समुद्र से, जगन्नाथ जी सोना भी मुश्किल हो गया था। आप जाएंगे देखेंगे, ऐसा एक ठाकुर जी का महिमा है, मंदिर का बीच आपको कोई आवाज, समुद्र का आवाज कभी सुनाई नहीं देगा, और मंदिर से थोड़ा बाहर निकल जाए आवाज, जगन्नाथ जी ने हनुमान को बोला था, यही बोला था, देखो रात में सोना भी मुश्किल हो जाता है, ये समुद्र इतना गर्जन करता है, इतना आवाज आता है, तुम इसको बंद करो। तब हनुमान जी ने गद्दा पकड़कर बैठे, आवाज ज्यादा मत नहीं करना है, आवाज नहीं करना है, ये आवाज तुम करो लेकिन मंदिर नहीं आना चाहिए, और मैं कान पात कर, इसको ऐसा है, मैं कान खोल कर सुन रहा हूं, जैसे तुम्हारा आवाज नहीं आना चाहिए, अगर आएगा ना मेरा पास गद्दा है, मैं प्रसाइज कर दूंगा तुमको। कितना हनुमान है, कितना देवी है, कहां कहां ठाकुर जी, पूरा एक बहुत बड़ा लीला क्षेत्र है, श्री क्षेत्र है, और कई कई बड़ा बड़ा पंडित लोग आकर जगन्नाथ जी का कितना बड़ा महिमा है कलयुग में, हम लोग का तो इतना विश्वास नहीं, क्या करें। जैसे बोले हैं रथ तो बामनम दुष्टा पुनर्जन्म न विद्यते, पुरी में कितना लोग रथ यात्रा में जाते हैं आपको पता है, हर साल कोई कोई आदमी बुढ़ा हो गए, बुढ़ी हो गए, उड़ीसा के वो जाते ही है, हम लोग कभी नहीं गए, मैं तो कभी नहीं गया, इतना डरता हूं कि इतना लोग भीड़ है कहां जाएंगे आप, हम कभी नहीं गए, लेकिन वो लोग जाते हैं, क्यों हम तो साधु हो जाने के बाद कभी इच्छा भी नहीं होता है कि हमारे गुरुदेव मना किए, तो सोचते इधर भगवान नहीं है क्या, इधर जगन्नाथ जी है ना, उनका रथ यात्रा है, उनको क्योंकि इस दिन में हमारा रथ यात्रा होता है, ठाकुर जी को छोड़कर कभी नहीं जाना, खुद का मंदिर है फेस्टिवल, उसको छोड़कर कहां नहीं जाना, इधर ही जगन्नाथ जी है, तो कभी भी हम नहीं गए और नहीं भी जाएंगे, गुरु जी बोले ना इधर ठाकुर है तो इधर रहना है और क्या। जगन्नाथ जी को रथ में दर्शन करने से हर जन्म नहीं होता है, मुक्ति हो जाता है। तो कितना लोग जाते हैं इस बार, 8 लाख से ज्यादा लोग, जब 8 लाख से ज्यादा लोग गए थे रथ यात्रा में, सोच लीजिए गवर्नमेंट के लिए बहुत बड़ा हेडक हो जाता है, इतना लोग आते हैं जगन्नाथ जी को दर्शन करने के लिए, ममता है प्रेम है जगन्नाथ जी को दर्शन करने के लिए। तो एक पंडित ने यह श्लोक सुना, क्या ये संभव है जगन्नाथ जी को दर्शन करने से मुक्ति हो जाता है, हम लोग का विश्वास होता है किसे दर्शन करने से मुक्त हो जाता है, भाई दर्शन करने से मुक्त हो जाता है, वो मुक्त कर देते हैं लेकिन हम फिर बंधन में पड़ जाते हैं, माया की बंधन में, उनका शक्ति है नहीं है, क्यों नहीं, वो भगवान कैसे बने, कलयुग में जगन्नाथ इतना प्रभावी ठाकुर है, दर्शन करने से मुक्ति हो जाता है, लेकिन एक बहुत बड़ा तार्किक थे, और उत्तर्क नहीं सिर्फ तार्किक नहीं पंडित भी थे, उनका नाम थे उदयन आचार्य, वो आचार्य थे, उनका काम था शंकर और बुद्धिस्ट जो लोग है ना उनको भगाना है, उन लोग नहीं मानते हैं ना ठाकुर जी को, तो बहुत बड़ा मायावादी को सब परास्त कर रहे थे, जीवन भर वही काम किए, जीवन भर भगवान की साकार रूप को ठाकुर जी है, ठाकुर जी का रूप है, इसको प्रतिष्ठा करने के लिए 55 से पंडित बनकर पूरा बुड्ढा हो गए, लेकिन वो तो तार्किक है ना, अंतर में कुछ रस नहीं मिल रहा था, जब बुड्ढा हो गए बिल्कुल बुड्ढा हो गए, एक रात में सोए थे तो उन्होंने, बहुत पंडित लोग को कभी कभी ठाकुर जी दया करते हैं, क्योंकि इतना ज्ञान है ना, अगर ज्ञानी लोग थोड़ा मेरा भक्ति प्राप्त नहीं करेंगे उनका जीवन निरस हो जाए, तो उनका एक श्लोक याद आया, मैं सब कुछ देखा हूं सब स्थान गया हूं लेकिन श्रीक्षेत्र नहीं गया हूं, मुझे पूरी जाना है, क्योंकि उनका एक डाउट था, क्या डाउट था, एक गीता में वो पढ़ा था कि एक बार जगन्नाथ जी को जो दर्शन करने कर लेता है उसका पुनर्जन्म नहीं होता है, वो बोल रहा था कि कितना आदमी जा रहा है फिर तो वापस आ रहा है घर को, उनका दिमाग में यही, भाई शरीर छोड़ने का बाद तुम जाएंगे, लेकिन उनका याद ये, उनको इतना समझ में आ रहा था कि पूरी लोग जाते हैं और उधर ही मुक्ति नहीं होते, फिर तो घर वापस चले आते हैं, मुक्ति कैसे हुआ, लेकिन जो बुढ़ा हो गए उनका इच्छा होगी मैं पूरी जाऊंगा, पूरी आए, वो जो पूरी आए बहुत कोशिश करके बहुत कष्ट से पूरी आए, बुढ़ा हो गए थे पैदल में आए, कहां से आप पता है, मिथिलापुर से, सीता मां की जहां घर थे, मिथिलापुर से पैदल से पूरी आए, बुढ़ा हो गए थे, पहले जवान में जो तीर्थ जाते थे पैदल में जाते थे, गाड़ी वगैरह में नहीं जाते थे, गाड़ी वगैरह में जाते तो मानते नहीं है तीर्थ है, आजकल क्या तीर्थ का महिमा आपको पता चलेगा, हम फ्लाइट में चले जाते हैं कार में चले जाते हैं, तो कष्ट नहीं पहुंचाए तो ठाकुर जी को स्मरण तो नहीं हो रहा है, पहले जमान में पैदल में जब जा रहे थे ना बीच में ठाकुर जी दर्शन दे देते थे, वो बुढ़े हो गए थे, वो बहुत प्रार्थना करते ठाकुर जी मैं पहुंच सकूंगा मेरा दर्शन होगा, कितना कातर बीच में प्रार्थना करते थे, ठाकुर जी स्वप्न में बार बार आकर दर्शन देते, तुम आ जाओ दर्शन हो जाएगा। तो वो गए उदयनाचार्य ने गए, जब मंदिर पूरी मंदिर का भीतर गए, वो जब मेन गेट की सिंह द्वार है ना, सिंह द्वार के भीतर घुसने लगे तो मंदिर बंद हो गए, जगन्नाथ मंदिर ऐसे बंद नहीं होते, मैं काल भूल गया बोलने के लिए, इंद्रदुम्न ने दो बात बोले थे जगन्नाथ जी को, तीन बार मांगे थे जगन्नाथ जी, जब ड्यूटी हो गया ना जगन्नाथ जी बोले इंद्रदुम्न तुम बर मांगो,
एक बार पहला बार मांगे कि मेरा कोई संतान नहीं रहना चाहिए, मेरा वंशज कोई नहीं रहना चाहिए, समझ रहे आप, मेरा कोई बाल बच्चा नहीं होना चाहिए। कितना बड़ा त्याग देखिए, क्योंकि मेरा बाल बच्चा हो जाएगा ना वो बोलेंगे कि मेरा बाबा जी का मंदिर है, मुझे कोई संतान नहीं चाहिए। कितना सुंदर भाग भक्त लोग देखिए। और दूसरा बर मांगे, प्रभु जी आप इतना भोजन कीजिए नीलाचल में जैसा आपका मुख और हाथ और पैर ये सूखा नहीं होगा, हर समय गीला रहे, समझ रहे हैं ना, भोग लगे रहेगा, जो भी आएगा प्रसाद पाएगा। तो इसे बर मांग लिए कि हर समय आपका मुख और हस्त और पांव गीला रहे। जो भोग रहता है, भोग लगाते हैं ना हम पुजारी लोग, क्या करते हैं, पानी देते हैं ना, वो गीला रहता है। और तीसरा पर मांगे, ज्यादा नहीं सोना है, सिर्फ 3-4 घंटा सोना है आपको, चार प्रहर बोल रहे हैं, 4 प्रहर मतलब 2 घंटा 2-3 घंटा मंदिर बंद होता है ना, 12 बजे बंद होता है, 4 बजे फिर खुल जाता है, कभी 1 बजे कभी 2 बजे, ज्यादा नहीं सोना है कि आप सो जाएंगे ना, ज्यादा मंदिर बंद होगा तो जो लोग आएंगे वापस जाएंगे, दर्शन नहीं मिलेगा। तब वो आए, जब उदयनाचार्य ने आए, एक बात पर उनको विश्वास नहीं हुआ था कि जगन्नाथ जी को दर्शन करने से तत्क्षणात मुक्ति कैसे मिल जाता है, इतना संदेह किया। देखिए ठाकुर जी मंदिर बंद कर दिए, पंडित लोग ने आए, वो मंदिर कैसे बंद हुआ, कोई लक नहीं किया बाहर से, भीतर से ठाकुर जी ने बंद कर दी। ये पहला जगन्नाथ जी के इतिहास में पहला काम है, जगन्नाथ जी ने पूरा बिल्कुल बंद कर दी, भीतर से लक कर दी, बाहर कोई ताला नहीं पकाए पुजारी लोग, भीतर से बंद कर दी। वो जितना पुजारी थे कोशिश किए खोलने के लिए, बिल्कुल नहीं, तो एक दिन बंद हो गए पूरा, बिल्कुल पूरा हल्ला हो गया कि जगन्नाथ भीतर से लक कर दिए, तो सब पुजारी बाहर थे, कौन लग कर रहे थे, उसको पता चला कि जगन्नाथ की इच्छा है। तो राजा को बताए, राजा पूरा पुरी में ये परंपरा है, अगर जगन्नाथ मंदिर में इधर उधर कुछ हो जाता है ना, वो फास्टिंग करके राजा कुश घास, पता है ना कुश, इस पर बेड है, घास पर सया करते हैं, मैट बनाते हैं, उसका सो जाते हैं और जगन्नाथ जी का नाम लेते हैं, कुछ खाते नहीं पीते नहीं, तब जगन्नाथ जी बोलते हैं ऐसा गलती वो किया है, ऐसा गलती। पहले जमाने में ऐसा ही था, पुजारी जो भोग लगा रहे थे ना, भोग लगाएंगे, पानी लेंगे हाथ में, इसमें जगन्नाथ जी दर्शन देते थे, जगन्नाथ जी के सामने पानी रखते हैं, जगन्नाथ जी आपको पानी मुख धोना है, तब जगन्नाथ जी को देखेंगे तो पानी में, तब तो भोग लगेगा, नहीं तो वो भोग जाएगा, वो नहीं लगेगा, और फिर गड्ढा करके फिर उसको डाल देना है, भोग नहीं लगेगा, ये प्योर नहीं, शुद्ध नहीं। ऐसे पहले था, इतना शुद्ध थे पुजारी लोग। ठाकुर जी ने राजा को बोले कि देखो वो एक उदयनाचार्य एक व्यक्ति आए हैं, वो बड़ा नास्तिक है, क्योंकि वो विश्वास नहीं कर रहा है कि जगन्नाथ जी को दर्शन करने से ही मुक्ति मिल जाती, वो जब तक श्रीक्षेत्र से नहीं जाएगा तब तक मंदिर बंद रहेगा, तो उनको भगाओ इधर से। तो वो पहले जमाने में तो गेस्ट हाउस नहीं था, पर पहले जमाने में धर्मशाला बोलते हैं, धर्मशाला, वो धर्मशाला में थे, वो सब ढूंढने लगे उदयनाचार्य कौन है कौन है, वो तो बुढ़ा लोग है, बहुत पंडित थे उनका पास, कुछ पंडित आदमी थे, लड़का लोग थे, उनको पूछने लगे तुम्हारा गुरु कौन है, हमारा गुरु उदयनाचार्य है, उनसे मिलाओ। वो आए तो बोलने लगे आप क्यों आए, जगन्नाथ जी को दर्शन करने के लिए, लेकिन जगन्नाथ जी बोले हैं आप जब तक नहीं जाएंगे दरवाजा बंद रहेगा। तो वो सोचने लगे मेरे लिए सब कितना पापी लोग आए, मैं इतना बड़ा पापी हूं क्या, मैं जीवन भर मांस मछली नहीं खाया हूं, मैं जीवन भर ठाकुर जी के लिए फाइटिंग किया हूं, भगवान का साकार रूप है ये, बौद्ध और जैन और शंकर इनको भगाने के लिए मैं जीवन भर मैं बुढ़ा हो गया हूं, लेकिन मैं क्या पाप किया हूं ठाकुर जी मेरे दर्शन नहीं दे रहे, कितना पापी लोग आए, मैं उनसे बड़ा पापी हूं क्या। वो बोले क्या ठाकुर जी का आदेश है, आप जब तक नहीं जाए तब मंदिर नहीं खुलेगा। तब बोले ठीक है मैं जाऊंगा, तब जाऊंगा गाली देकर जाऊंगा, 2-4 पद सुनाकर जाऊंगा, देखूंगा, आर तो मुझे तो मरना ही है, मुझे नरक जाना ही है,
क्योंकि वो दर्शन नहीं दे रहे हैं। तो आए मंदिर के सामने और गाली देने लगे, पर भीतर गए, सबको पता था तो मंदिर खुलने वाले नहीं है, वो जब तक वापस नहीं जाएंगे तब मंदिर के सामने गाली दे रहे हैं। प्रभु जी मेरा जीवन भर में आपके लिए लड़ाई किया हूं, आप सोच रहे हैं मैं जब मर जाऊंगा ना देखेंगे बौद्ध लोग और जैन लोग आपको क्या करेंगे, इसका बाद आपका हालत क्या होगा तब आप सोचेंगे मेरा बात मैं क्या किया हूं, मैं अभी जा रहा हूं ऐसा बोल के जब वापस आ रहे तो मंदिर खुलने लगे। जब मंदिर खुलने लगे तो जगन्नाथ को दर्शन किए तो उधर ही शरीर छोड़ दिए, तो अब उनका विश्वास हो गया कि हाँ जितना उनका चेला लोग थे ना उनको बार बार बोला था ये जो बात पुराण में है ना ये ठीक नहीं है कि जगन्नाथ जी को दर्शन करने से मुक्ति हो जाता है, वही प्रमाण हो गया। वो डाउट कर रहा था वही व्यक्ति प्रमाण हो गया, देखिए ठाकुर जी कितना बड़ा लीला है। और सब सब लोग देखते थे वो शरीर छोड़े और चतुर्भुज होकर चले उधर है चाहे, क्योंकि जीवन भर पंडित थे लेकिन एक चीज को डाउट कर रहा था कि दर्शन से मुक्ति मिलता है। इसलिए ठाकुर जी बंद द्वार बंद कर दिए कि बड़ा आदमी है ना उनके लिए छोटा दोष को ठाकुर पकड़ लेते हैं, हम तो छोटा आदमी हम कितना भी दोष करते ठाकुर बोलते हैं ठीक है जो भी करने करो ये छोटा आदमी, वो बड़ा आदमी है जीवन भर ठाकुर जी के लिए बहुत श्रम किए। जगन्नाथ जी का कई ऐसा लीला है, बहुत अद्भुत लीला है, आज तक चलता है, आज तक जगन्नाथ का ऐसा लीला चलता है। जो भक्त होते पहले जमाने में बहुत निष्काम भक्त थे इसलिए जगन्नाथ जी से प्रकट करते थे, आजकल तो सब सकाम ही हो गए, हम लोग कामना बहुत है ममता नहीं है प्रेम नहीं है, तो ठाकुर जी को रसी पुकसन नहीं देते ज्यादा, ज्यादा रसी पुकसन नहीं देते। पहले जमाने बहुत भक्त थे, कितना लीला है सो देखना है हम लोग को जीवन में। अब गए हैं ना कभी एक आश्रम है हमारे संप्रदाय में एक आश्रम जहां हरिदास ठाकुर भजन कर रहे थे सिद्ध बकुल, उधर ही शरीर छोड़े थे, चैतन्य महाप्रभु बोले थे तुम इधर ही रहना और जगन्नाथ जी चक्र को दर्शन करना, जगन्नाथ जी का दर्शन हो गए तो भजन कर रहे। वो जो पेड़ है ना आप देखे ना पेड़, पेड़ का भीतर कुछ नहीं है सिर्फ पेड़ है, अंत सार जो बोलते हैं ना भीतर का जो चीज है कुछ नहीं, वो पहले बहुत ताकत वाला पेड़ था। रथ यात्रा में हर साल जितना वो जो लगता है ना जितना लकड़ी लगता है ना सब लकड़ी नया होता है सब, और देखिए ना आप कितना कितना बड़ा बड़ा व्हील्स होता है चका होता है कितना बड़ा बड़ा। तो एक बार रथ यात्रा हो रहा था जगन्नाथ का पहिया टूटने लगा, ये चक्का जो है ना बड़ा बहुत बड़ा चक्का है वो टूटने लगा, दो साइड में चक्का होता है बीच में एक लंबा पहिया होता है वो पहिया टूट गया। जब पहिया टूट गया तो क्या करना है, वो कहां आता है वो कम से कम 200 किलोमीटर दूर से, वो सब इसको फांसी गच्छ फांसी ट्री बोलते हैं पेड़ बोलते हैं फांसी एक स्पेसिफिक ट्रीज है, दूसरा ट्री में वो नहीं होता है बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, लेकिन जल्दी से जल्दी रिपेयर करना है क्योंकि जगन्नाथ का रथ यात्रा हो रहा है वो टूट पहिया टूट गया। तो गजपति राजा ने बोले कि ठीक है देखो पूरी का भीतर कौन पेड़ है ऐसा मोटा पेड़ है उसको लाओ काट कर पहिया बनाएंगे। तो सैनिक लोग गए तो देखने लगे कि इधर ही बहुत बड़ा पेड़ है वो बहुत बड़ा पेड़ है, और बोले कल सुबह आना है उसको काटना है, और सुबह गए वो पेड़ को काटने के लिए, सैनिक लोग जब गए उसको काटने के लिए वो जाने से पहले रात भर में वो बिल्कुल भीतर में जो था ना अंतसार सब निकल गया, छिलका जैसा छिलका जैसा है सिर्फ। तब पंडित लोग गए और सैनिक लोग गए राजा भी गए देखने लगे पेड़ ऐसा हो गया एक रात में सा कैसा हो गया, क्योंकि हरिदास ठाकुर वही पेड़ के नीचे भजन कर रहे थे नाम कर रहे थे कलयुग में नाम का साखी वही पेड़, और वो जो पेड़ है ना वो बकुल ट्री बोलते हैं, बकुल क्या बोलते हैं हिंदी में भी बकुल बोलते हैं अंग्रेज में क्या मुझे पता नहीं है बकुल बोलते हैं, वो पेड़ है। जगन्नाथ जी सुबह सुबह दांतुन करते हैं, समझते हैं दांतुन, दांत सफाई करते हैं हम लोग, जैसा तुलसी का पता देते हैं कभी कभी, वो जगन्नाथ जी का एक सेपरेट ट्रीज है दांत साफ करने के लिए, उसका छोटा छोटा वो लकड़ी लाते हैं, उसको ऑफरिंग करते हैं। एक बार 3 लाए थे लकड़ी, एक कहां गिर गया, 2 था, और जल्दी से जल्दी एक लकड़ी चाहिए जगन्नाथ जी का दांत साफ करने के लिए, और पास में एक बकुल ट्री थे उसको ले आए, और जगन्नाथ जी का दांत साफ हो गया, सुबह सुबह सेवा हो गया, और चैतन्य महाप्रभु गए थे दर्शन करने के लिए, उस समय महाप्रभु थे, और वही बकुल का पेड़ से जो लाए थे ना, उसको चैतन्य महाप्रभु पूजा लोग दे दिए प्रसाद स्वरूप, आप ले जाइए, जगन्नाथ जी का ब्रश है, वुडन ब्रश ले जाइए। और इसको चैतन्य महाप्रभु लाए, और जहां हरिदास ठाकुर भजन कर रहे थे उधर ही मिट्टी में उसको डाल दी, और उसी से इतना बड़ा पेड़ बना, जगन्नाथ जी का प्रसाद है ना, और उसका नीचे ये बहुत बड़ा पेड़ हो गया, और उसका नीचे हरिदास ठाकुर भजन कर रहा था, ये सिद्ध वृक्ष है ना, सिद्ध बकुल बोलते हैं, सिद्ध वृक्ष, और इसको काटने के लिए फिर जगन्नाथ जी की सेवा के लिए, देखो नाम का कितना बड़ा महिमा है, अपराध हो जाएगा ना, कि जगन्नाथ का प्रसाद है, अरे प्रसाद है फिर ठाकुर की सेवा में लगेगा, लेकिन नाम महिमा इतना है कि एक शुद्ध भक्त दिन रात नाम किए हैं, नाम को प्रतिष्ठा करने के लिए इतना बड़ा पेड़ था, भीतर पूरा खाली हो गया, सिर्फ छिलका तो जैसा है, आज तक है वो पेड़ है, आज तक आप जाएंगे तो देखेंगे उधर ही हरिदास ठाकुर भजन भजन, पूरी में कहां भी जाएंगे ना सब जगह में लीला है, सब जगह में, आजकल लोग नास्तिक हो गए, टूरिस्ट प्लेस बना दिए, हर समय लोग देखिए ना कितना लोग आते हैं, स्पोर्टिंग करो ये करो सब, समुद्र में टूरिस्ट प्लेस बना दिया सरकार ने, पहले जमाने पर संत का सब संत से संत, सब जितना मंदिर है, जितना मठ है, जितना आश्रम है, सबका सबका हिस्ट्री, क्यों ये आश्रम बना है, क्यों ये आश्रम बना है, क्यों ये आश्रम बना है, पहले मंदिर आप जाते हैं ना राइट साइड में देखेंगे अंग्रेज में भी लिखा है बड़ छत्ता मठ, पढ़े कभी एंट्री, जहां चप्पल वगैरह रखते हैं ना राइट साइड में, इधर एक मठ है, छोटा मठ बड़ा मठ, एक साधु ने छत्ता पकड़ कर, छत्ता अम्ब्रेला ना छत्ता बोलते हैं ना, इसको पकड़ कर बैठे थे और भजन कर रहे थे, और कैसे भजन कर रहे थे आपको पता है, हाथ में जगन्नाथ जी की कुकिंग करने के लिए जो आग होता है ना वो कभी बुझता नहीं, वैसे ऐसे रहता है, उसको रखना पड़ता है, कहां से नहीं लाता है, माचिस वगैरह यूज नहीं होता है, वो बहुत ट्रेडिशनल है, माचिस वगैरह यूज नहीं होता है, वो अग्नि को ऐसा धारण करके कोई रखता है, इसका मतलब साधु लोग जो भजन करते हैं ना रात भर कीर्तन होता है भजन होता है उधर आग रहता है उसको लेकर फिर कुकिंग शुरू होता है। उसी टाइम में थोड़ा डिस्टर्बेंस हो गया था, मुस्लिम लोग बहुत अटैक कर रहे थे, बहुत कुछ हो गया था, राजा ने एक परीक्षा करने के लिए उनका इच्छा हुआ कि जगन्नाथ जी का जो कुकिंग करने के लिए जो आग है उसको पकड़कर अगर कोई साधु रखेगा हाथ में 15 दिन तक तब तो जगन्नाथ का कुकिंग स्टार्ट होगा। पहले थोड़ा डिस्टर्बेंस हो गया था, उस समय बहुत मुस्लिम लोग अटैक किए जगन्नाथ मंदिर में, बहुत कुछ प्रॉब्लम चल रहा था उस समय। उनका नाम था रघुबर, वो केवट था, मछली पकड़ रहा था लेकिन वो जगन्नाथ जी का भक्त था, वो मछली पकड़ रहा था लेकिन मछली खा नहीं, खा भोजन करता था, मछली पकड़ रहा था, पिताजी पकड़ रहा था, वो भी पकड़ रहा था, केवट था। एक बार मछली पकड़ रहा था, जाल फेंक दिया, बहुत बड़ा मछली जाल का भीतर आ गया, और वो मछली बोल रहा था हरी हरी, मछली सब बोल रहा था हरी हरी, मुझे रक्षा करो, मुझे रक्षा करो, राम कृष्ण हरी ऐसा बोल रहा था, कभी कभी राम बोल रहा था, कभी कभी कृष्ण बोल रहा था, कभी कभी बोल रहा था कि मुझे रक्षा करो, मुझे रक्षा करो। तो उनको आश्चर्य लगा, मछली कैसा कृष्ण बोल रहा है, और बहुत मछली पकड़े हैं। तब उनका मन में बहुत पश्चाताप हुआ, मैं कितना गलती कर रहा हूँ, ये एक जीव है, उसका अंतर भगवान भी है, जब मैं जगन्नाथ जी का भक्त हूं मैं ये क्या कर रहा हूं। तो उन इतना पापी खुद सोचने लगे कि घर छोड़ दिए, वो आए श्री क्षेत्र में, लेकिन वो नीच जाति का, नीच जाति जो लोग पूछते थे ना तुम कौन हो, वो बोलता है मैं नीच जाति का हूं। लेकिन उस समय कंपटीशन चल रहा था, जगन्नाथ जी का कुकिंग के लिए जो आग है उसको पकड़कर कौन 15 दिन तक रह सकता है हाथ में। तब तो उन्होंने एक छत्ता पकड़कर, छत्ता ऐसा रख लिया, उधर बैठ गए, और इतना जगन्नाथ प्रेमी थे, जगन्नाथ का नाम लेते लेते वो आग को पकड़कर रह गए। आपको पता नहीं एक लीला है, उनका एक लीला है, आज तक ये मंदिर में चल रहा है, श्री मंदिर में। लेकिन उनका जब मरण समय हो गया, शरीर छोड़ने का समय आ गया, उधर ही रहकर भजन करता था, इसलिए अभी भी देखिए बड़ छत्ता मठ लिखा है उधर। कोई आश्रम नहीं बनाया था, एक छत्ता के नीचे रहते पर भजन करते थे, आग पकड़कर, जगन्नाथ का हाथ में आग पकड़कर 15 दिन रहे। उनका मरण समय जब आ गया, शरीर छोड़ने का समय आ गया, उनका इच्छा हुआ कि मैं थोड़े जगन्नाथ जी को स्वीट राइस कुकिंग करके दूंगा। लेकिन जगन्नाथ मंदिर का कानून क्या है आपको पता है, बाहर से कोई कुकिंग करता ना भीतर नहीं जाए। और आप ये मत सोचिए जो सब कुकिंग होता है वो जगन्नाथ जी का दो भोग लगता है, पता है आपको जगन्नाथ जी का भोग जो लगता है, आप लोग जो प्रसाद लेते हैं ना वो बाहर का प्रसाद है, इसको भंड भोग बोलते हैं, भंड, इसको मतलब चीटिंग कर रहे हैं जगन्नाथ जी को। भंड भोग मतलब वो जगन्नाथ जी के सामने एक और एक छोटा घर है, जगन्नाथ जी इधर बैठे हैं ना उनका सामने वो भोग रखते हैं, और तुलसी वगैरह उधर पड़ते हैं, और पंडे लोग उधर बोलते हैं प्रभु जी आप भोजन कर दीजिए, वो भी भोग है, वो कभी बढ़ सकता है कम सकता है, लेकिन जगन्नाथ जी का जो भोग है भीतर जो लगता है अल्टर में वो फिक्स है। उनका जो पुजारी है वो अलग है, वो बिल्कुल घी में होता है, तो जो केक वगैरह होता है ना हम, आप जैसे ग्राइंडर पहले ग्राइंडिंग कर देते हैं, उसे घिसाई करना पड़ता है पत्थर में, अभी भी वो ग्राइंडर में ऐसे पत्थर में ऐसे ऐसे करके चावल वगैरह को वो ग्राइंडिंग करते हैं। आज तिथि के हिसाब से, आज पूर्णिमा है, आज अमावस्या है, आज ये तिथि है, आज वो तिथि है, इसी हिसाब से आपको करना है। भीतर में जो भोग लगता है उनके लिए पुजारी अलग है, और कुकर जो है वो अलग है, बाहर जो लगता है वो अलग है, हम लोग उसको लेते हैं, ये भोग में मिलता है, वो जब निकलता है आप पंडे लोग का पीछे जाएंगे तो पैसा देंगे तो मिलेगा, और कब निकलता है बहुत टाइम लगता है, आपको वेटिंग करना पड़ेगा, आप बोलेंगे कभी रात दिन 1 बजे कभी 3 बजे, कि जगन्नाथ का सेवा का तो सेवा होगा, एक पर एक सेवा, कोई बंद नहीं होगा, बहुत सेवा है ना, बहुत सेवक है, कोई थोड़ा बाथरूम चला गया तो 10 मिनट लेट हो गया, 10 मिनट लेट हो गया तो हो गया लेट सब लेट। और ऐसा मतलब नहीं ये पुजारी नहीं है किसको बुला लो, नहीं नहीं, नहीं। उनका जो पुजारी जो करना है वही करेंगे, पता है ना आपको, जो ड्रेसिंग करने वाले वो अलग पुजारी है, उसको सिंगारी बोलते हैं। हमारा पुजारी क्या करते हैं, हम पुजारी कर लेते हैं और सिंगारी भी कर, ड्रेसिंग भी कर लेते हैं और आरती भी कर लेते हैं और भोग भी लगा देते हैं, जगन्नाथ जी का ऐसा नहीं है। जो सिंगारी जो है उनको सिंगारी बोलते हैं, श्रृंगार करता है, ड्रेसिंग करता है, उनका अधिकार नहीं है भोग लगाने के लिए। जगन्नाथ जी का जो भोग लगाते हैं ना उनके लिए एक टूल है, संस्कृत टूल है, स्कूल है। 10,000 से ज्यादा वेद मंत्र, सॉरी 1,000 से ज्यादा वेद मंत्र और मंत्र परीक्षा देते हैं, उसको मुखस्त बोलते हैं, पूरा याद में रखते हैं 1,000 से ज्यादा मंत्र, और ट्रेडिशनली उनको ट्रेनिंग लेना है तब तो वो भोग लगा सकते हैं, उनका लड़का, उनका लड़का, इसका मतलब नहीं उनका लड़का लगाएंगे, ऐसा नहीं, फिर पढ़ाई करना है, याद रखना है, ट्रेनिंग लेना है, तब तो भोग लगाएंगे। श्रृंगारी अलग है, भोग लगाना वाले अलग है, बर्तन साफ करने वाले अलग है, ठाकुर जी का पीढ़ा बोलते हैं हम, क्या भोग ठाकुर जी जब प्रसाद लेते हैं ना, भोग लेते हैं ना, वुडन स्टूल उड़िया में उसको पीढ़ा बोलते हैं, वुडन स्टूल से उसको रखने के लिए अलग आदमी, बेड लाएंगे अलग है, पुजारी बेड नहीं लाएंगे, बेड लाने के घी जो आरती जो सजा जगन्नाथ जी की आरती सजाने के लिए वो अलग है, वो पुजारी आरती रेडी करके पुजारी को देंगे हाथ में, तब तो वो आरती करेंगे, वो खड़ा होकर ऐसे ही रहेंगे, वो ट्रेडिशन आज तक चल रहा है। हम हमारा पुजारी क्या है, वो सब कुछ करता है लाकर, वो ऐसा नहीं, वो माचिस नहीं लगाएंगे पुजारी, वो खड़ा होकर रहेंगे, उसके लिए अलग है, बहुत ट्रेडिशन। मैं ये बोल रहा था बाहर से कुछ नहीं चीज जाने वाला है, आप बाहर से कुछ कुकिंग करेंगे भीतर जाएगा, ऐसा अलाव नहीं जगन्नाथ मंदिर, लेकिन उनका इच्छा था रघुवर का, मैं मर जाऊंगा, मैं तो निज जाति का हूं, और जगन्नाथ मंदिर का ये तो परंपरा है, बाहर का चीज भीतर नहीं जाता है, लेकिन मेरा इच्छा है थोड़ा स्वीट राइस देने के लिए, खीर देने के लिए ठाकुर जी। वो सचमुच कुकिंग किया, और जब वो लेकर जा रहा था पंडा लोग भगाने लगे, तुम इतना बड़ा साधु हो, वहां से थोड़ा कोई चीज लगता है इधर भागो। आपको पता है उस दिन पूर्णिमा था, और पहले यही हालत था जगन्नाथ जी का, जब रूठ जाते थे ना, आज नहीं मुझे भोजन करना है, उनका टरबान सब गिरता था। जगन्नाथ जी जब जब भी भूख लगता है ना, जगन्नाथ जी कपड़ा चेंज होता है, पता है आपको, गांव में ऐसा होता है, हमारे इंडिया में ट्रेडिशन था, पिताजी लोग बाहर जाते थे ना, आएंगे वही कपड़ा में भोजन नहीं करेंगे, कपड़ा चेंज करेंगे, हाथ पांव धोएंगे तब तो भोजन करेंगे, आजकल तो कुछ नहीं, वही कपड़ा में खा जाओ, सो लाटिन जाओ, सब जगह ऑफिस जाओ, सब जाओ। जगन्नाथ जी का ऐसा भी है, वो जब भोजन करता है सब चेंज होता है ड्रेस, और उनका टर्बान अलग लगता है, जो पगड़ी है ना अलग पगड़ी लगता है, और कपड़ा वगैरह लगता है, माला लगता है। और उस दिन वो पंडा ने उसको भगा दिया ना रघुवर को, क्योंकि वो कुकिंग करके लाया था। क्या हुआ आपको पता है, दिन भर वो कपड़ा गिरने लगा, फूलमाला गिरने लगा, तो पूजा पुजारी सोच रहा था क्यों गिर रहा है, तो विधि है ना, माला देना है, कपड़ा देना है, तब तो भोग लगाना है, लेकिन वो माला देता था वो गिर जाता था, जैसे बच्चे लोग फेंक देते हैं ना, ऐसे फेंक देते, वो तंग हो गए पंडे लोग, तब जा ठाकुर जी बोले मैं आज भोजन कभी नहीं करूंगा, उनका जो स्वीट राइस है खीरी है ना उसको लाओ भोग लगाओ, तब तो मैं भोजन करूंगा। और आज तक वही मंदिर में कितना परंपरा है, आज तक चल रहा है भक्त के लिए, ये कानून नहीं अब चल रहा है, उस समय से कानून हो गया, बाहर से आ सकता है लेकिन एक एक डिवोटी के लिए, रघुवर के लिए, और एक मां थे, वो एक मां थी, वो ऐसा ही, उसको लांडी माता बोलते, हम बाबा जी लोग जैसे हम सेविंग होते हैं ना, वो माता जी लेकिन सेविंग होती थी लेकिन उनका एक दुख थी, इसका बात विश्राम कथा को, उनकी एक दुख थी कि वो जब जगन्नाथ जी का भोग प्लेट भोग लग जाता था ना, प्रसाद प्लेट को देखता था रोता था, वो बार बार रोती थी, क्यों, आपको अच्छा भोग लगे हैं आप देखेंगे तो खुश हो जाएंगे ना, लेकिन वो रोती थी, क्यों रोती थी, वो हर समय रोती थी कि मेरा लड़का जगन्नाथ है लेकिन बार बार उनको मिठाई खिलाते हैं स्वीट्स, उनका पेट में दर्द होगा, उसको कुछ करेला कुछ नीम पीता कुछ नहीं पीता कुछ भी नहीं देते, सिर्फ स्वीट्स स्वीट्स स्वीट्स, वो हर समय रोते थे तो वो क्या करते थे, नीम करेला का पत्ता नीम का पत्ता उसको लाकर एक साक बनाकर कुकिंग करके वो सारी का नीचे वो लाते थे, और जगन्नाथ जी के सामने खड़ा होकर जगन्नाथ जी को तुलसी मंगा कर इसे देख, जगन्नाथ जी भोजन करो कर लो, चिप चिप कर दिखा कर फिर ले जाते, हर दिन ऐसा करते थे, हर दिन ऐसा करते थे। जब मरने की समय आ गई, जगन्नाथ जी को तो पता है वो चले जाएंगे तो कोई नहीं लगाने वाली, और मैं स्वीट्स कितना दिन खाऊंगा, मुझे भी चाहिए नीम लिप चाहिए, करेला पत्ता चाहिए, नीम पत्ता चाहिए। तो एक दिन वो कुकिंग करके वो साग लाती थी, वो पकड़ लिया उनको सिक्योरिटी गार्ड ने, बोले माँ भीतर क्या ले रहे, वो बोले मेरा लड़का है। तुम्हारा लड़का है कहां? तुम्हारा लड़का है? वो लड़का समझ रहे थे जगन्नाथ मेरा लड़का है, मेरा दो लड़का है। बोले कहां है? मंदिर में बैठे, तुमको पता नहीं? मंदिर में तुम्हारा लड़का है, मंदिर में तो खाना बाहर से खाना नहीं जाता है, कौन लड़का के लिए ले जा रहे हैं? अरे जगन्नाथ बलराम मेरा दो लड़का है। तो वो सोचे जोखिम, इसलिए पागली है ये, बाबरी है, इनको दो थप्पड़ लगा है। वो जो पट थे ना वो पत्थर का, पहले जमाने में हमारे इंडिया में पत्थर में ठाकुर जी बोल रहे थे, पत्थर का पट, कटोरी वगैरह पत्थर में, इसमें साख था, फेंक दी, वो टूट गए। लांडी माता बोलते थे क्योंकि उनका उधर सेविंग होती थी, और रोते रोते सो गए रात में। और उस दिन वही हालत हुआ, दिन भर भूख नहीं लगा, माला गिर रहा था, कपड़ा गिर रहा था, पंडित लोग तंग हो गए। फिर जगन्नाथ बोले, गजपति महाराज तुम्हारा जो सिक्योरिटी गार्ड है ना, वो मेरा माँ को बहुत मारपीट की, कोई माँ फिर कुकिंग करके साग लाएंगे, मुझे ऑफरिंग होगा, तब तुम्हें भोजन करूंगा, तो मैं शांत होगा। और ये जब तक वो जिंदा है, जब तक शरीर में है, तब तक वो मुझे ऑफरिंग करेगा उस साग। और जाने का बाद उनकी नाम पर ये अपरिंग होगा। आज तक जब ठाकुर जी को वो निम पिता वगैरह देते हैं ना, बोलते हैं मां जगन्नाथ जी लांडी माता आपके लिए भेजे हैं। मंदिर में नाम पर भोग लगता है, कितना खिचड़ी है उनका नाम पर लगता है, जगन्नाथ जी कर्माबाई आपके लिए खिचड़ी लाए हैं। पंडा कभी नहीं बोलते हम कुकिंग किए, कभी नहीं बोलेंगे, उनका नाम लेंगे तो जगन्नाथ जी भोजन करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। बहुत लीला जगन्नाथ मंदिर, कितना लीला है, कितना बहुत लीला है। क्योंकि कलयुग में तो जगन्नाथ है, कृष्ण भगवान ने जगन्नाथ बने हैं, और हम लोग को दया करने के लिए प्रसाद स्वरूप में रथयात्रा होता है, दर्शन हम लेते हैं, सेवा करते हैं, पति तपा बने। तो हम लोग प्रभुपाद जी ने पहले जो विदेश आए थे उनका इष्टदेव थे जगन्नाथ रथयात्रा किए थे, बहुत खुश हुए प्रभुपाद जब जगन्नाथ को देखे विदेश, प्रणाम किए प्रभुपाद, पहले प्रणाम करते। तो हम लोग का यही भरोसा है ठाकुर जी और साधु लोग प्रभुपाद के आश्रम में, साधु लोग के आश्रम में रहकर उनकी सेवा करना है, भजन करना है, और भगवान की जगन्नाथ जी की दया हो जाएंगे तो हमारा उद्धार हो जाएगा। हरे कृष्ण, जय जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय। सुभद्र